जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. भगवती उत्तम श्लोके ভক্তির ভৌতি নষ্ট কি। শ্রীমদ্ ভাগবতম স্কন্ধ সাত অধ্যায় পাঁচ শ্লোক ক্রমাঙ্ক পাঁচ। মেরে পিছে দোহরাইয়ে। শ্রী প্রহ্লাদ উওয়াচ তত সাধু মন্যে অসুরবর্য দেহিনাম সদা সমুদ্বিগ্ন ধিয়াম সদগ্রহাত। হিত্বাত্মপাতম গৃহমন্ধকূপম বনম গতো যদ হরিমাশ্রয়েত তত সাধু মন্যে অসুরবর্য দেহিনাম সদা সমুদ্বিগ্ন ধিয়াম সদগ্রহাত। হিত্বাত্মপাতম গৃহমন্ধকূপম বনম গতো যদ হরিমাশ্রয়েত তত সাধু মন্যে অসুরবর্য দেহিনাম সদা সমুদ্বিগ্ন ধিয়াম সদগ্রহাত। হিত্বাত্মপাতম গৃহমন্ধকূপম বনম গতো যদ হরিমাশ্রয়েত ইয়ম ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত স্তুবন্তি দেব্যেস্তবে বেদে সাঙ্গ পদ ক্রমোপনিষদে গায়ন্তি ইয়ম সামগা ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি ইয়ম যোগিনো যস্যান্তম ন বিদুসুরাসুরগণা দেবায তস্মৈ নমঃ। হরে কৃষ্ণ। তো আপ সব ভক্তো কা আন্তরাষ্ট্রীয় কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ কি ওর সে প্রস্থাপিত শ্রীমদ ভাগবত কথা কে ইস সত্র মে হার্দিক স্বাগত করতে হ্যাঁ। পিছলে দু দিন সে हम यहां पर श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के चतुर्थ और पंचम अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल शाम को हम सब ने श्रवण किया श्री नारद मुनि राजसूय सभा में धर्मराज युधिष्ठिर को प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहे हैं। इस कथा के दौरान महाभागवत प्रहलाद शंड और अमर के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। एक साल तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब प्रहलाद महाराज घर पर आए। वास्तव में एक बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, संसार में कोई भी व्यक्ति जब प्रहलाद का नाम लेता है तो उसके साथ महाराज अवश्य लगाता है। यद्यपि प्रहलाद कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, 5 साल के बालक है, फिर भी उसे महाराज कहा जाता है। वास्तव में महाराज वो है जो भगवान की परम भक्ति करता है। संसार में धन, गाड़ी, बंगला, पैसे, ये सब हो जाना, इससे व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है। बड़ा व्यक्ति भक्ति से बनता है। इसलिए आप देखते हो इस संसार में जो शासन करता है उसे केवल राजा कहा जाता है, जो देश का राजा होता है, परंतु जो भजन करता है उसे महाराज कहा जाता है। जैसे लोकनाथ महाराज, जय पताका महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भजन करने वाले को महाराज कहते हैं और पूरे विश्व में शासन करने वाले को केवल राजा कहा जाता है। भजन करने वाला राजा से भी बहुत सुखी होता है। प्रहलाद महाराज राजा है, महाराज है, और ऐसा चरित्र है जिस चरित्र का वर्णन उनके गुरु नारद मुनि राजसूय सभा में एक से एक राजा महाराजा, यहां तक पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कौरव, पांडव समेत साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी सभा में उपस्थित थे, उस सभा में नारद मुनि के द्वारा प्रहलाद महाराज की कथा कही जा रही। और भक्त की कथा सुनना वास्तव में इस संसार में सबसे उपाध्याय कार्य है। एक आचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं, यदि आपको भक्त को प्रसन्न करना हो, यदि भक्त को प्रसन्न करना है तो भगवान की कथा सुनिए, और यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भक्त की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि भक्त जो होते हैं वे भगवान से भी बड़े होते हैं। एक बहुत बड़ा विद्वान और कवियों का सम्मेलन हुआ जिसमें एक से एक ज्ञानी और पंडित लोग थे। तो सभी विद्वानों के बीच में यह प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो एक विद्वान ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी से ही अन्न मिलता है, पृथ्वी से ही भोजन मिलता है, और इसी के कारण सब लोग जी रहे हैं। यदि पृथ्वी न होती तो कोई न होता। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है। तब एक विद्वान पंडित ज्ञानी ने कहा कि नहीं नहीं, पृथ्वी तो बहुत छोटी है, पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। सूर्य दिख रहा है बहुत छोटा, परंतु दूर होने के कारण वह छोटा है, देखा जाए तो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। और उस सूर्य से ही तेज अग्नि निकलती है, और सूर्य के ताप से ही सब अन्न पैदा होते हैं, सूर्य की गर्मी से ही सब लोग जीवित हैं। इसलिए पृथ्वी से बड़ा सूर्य है। सब लोगों ने ताली बजाई, परंतु 2 मिनट के बाद एक ज्ञानी ने कहा कि नहीं नहीं, सूर्य तो बहुत छोटा लोक है, सूर्य से बड़ा तो यह ब्रह्मांड है। सूर्य से बड़ा तो यह ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में 14 लोक, अतल, वितल, तलातल, पाताल, पृथ्वी, जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक तक 14 लोक इस ब्रह्मांड में है, इसलिए सूर्य से भी बड़ा यह ब्रह्मांड है। और सबने ताली बजाई, परंतु एक पंडित ने कहा नहीं नहीं, यह ब्रह्मांड भी छोटा है, इस ब्रह्मांड से परे, इस भौतिक जगत ब्रह्मांड से परे एक आध्यात्मिक जगत है, तो यह ब्रह्मांड से बड़ा है आध्यात्मिक लोक, भगवान का धाम। इसलिए इस संसार में यहां पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा भगवान का धाम है। सब लोग खुश हो गए, भगवान का धाम सबसे बड़ा है। तब एक ज्ञानी ने कहा, नहीं नहीं, भगवान का धाम बड़ा नहीं है, क्योंकि भगवान का धाम तो भगवान के अंदर से प्रकट होता है, इसलिए भगवान के धाम से भी बड़े साक्षात भगवान श्री विष्णु है। इस संसार में सबसे बड़े कौन है? भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। सब लोगों ने एक स्वर से धन्यवाद साधु साधु कहा, परंतु अंत में एक भक्त खड़े होकर कहने लगे, इस संसार में भगवान बड़े नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात भागवत में कहते हैं, भगवान का कथन है, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्त के अधीन रहता हूँ, मेरा भक्त मुझे जैसे नचाता है मैं वैसे नाचता हूँ, इसलिए मैं मेरे भक्त का सेवक हूँ, नौकर हूँ, इसलिए इस संसार में भगवान से भी बड़े यदि कोई है तो वह है उनके भक्त वैष्णव। यह अंतिम निर्णय निकला, इस संसार में सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े भगवान के भक्त है वैष्णव। और आप सामने देख सकते हैं, भले भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हैं, अपने एक इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन और प्रलय कर सकते हैं, परब्रह्म ईश्वर परमेश्वर है, परंतु भक्त के हाथ से उसे बंधना पड़ता है, जैसे यशोदा मैया ने बांध दिया। यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से उखल के साथ बांध दिया। भक्त के हाथ से भगवान बीक जाते हैं। और वहां पर सत्यव्रत मुनि वेदव्यास जी लिखते हैं कि वास्तव में यशोदा मैया ने रस्सी के बंधन में नहीं बांधा है, आप भ्रम में मत रहिए, यशोदा ने अपने प्रेम के भक्ति के बंधन में कृष्ण को बांधा है। इसलिए नमस्ते दुदामने स्फुरदीप्ति धामने, बहुत सुंदर कहते हैं कि हम उस रस्सी को प्रणाम करते हैं जिस रस्सी से भगवान बंधे हैं। वास्तव में भगवान को भक्त के हाथ से बंधना पड़ता है, क्योंकि भक्त जो है भगवान को बांध देते हैं। तो इस संसार में सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं, और हम सबका परम सौभाग्य है, पिछले दो दिन से हम ऐसे ही भगवान के परम भक्त महाभागवत प्रहलाद महाराज की कथा सुन रहे हैं। वास्तव में प्रहलाद महाराज महाभागवत हैं। इस संसार में भगवान को ठीक ठीक जानने वाले केवल 12 लोग हैं, और कोई भगवान को ठीक से नहीं जान सकते हैं, केवल 12 लोग, जिसे 12 महाजन कहा जाता है, वे ही भगवान के बारे में जान सकते हैं। और यमराज जी इस बात को कहते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकीर वयम, ये सब लोग भगवान को ठीक से जान सकते हैं, और उनमें प्रहलाद महाराज का नाम। तो ऐसे महाभागवत महाजन प्रहलाद महाराज की कथा नारद मुनि सुना रहे हैं, और कल रात को हम सब ने श्रवण किया। प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं, शंड और अमर की गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं, 1 साल तक शिक्षा प्राप्त की, और 1 साल शिक्षा प्राप्त करके जब वापस घर पे लौटे तो उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया, और जैसे आज के पिता अपने पुत्र को पूछते हैं, बेटा स्कूल में क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़कर आए, वैसे ही दैत्य राज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा कि हे वत्स बेटा, आज तक तुमने जो भी शिक्षा प्राप्त की उनमें से अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? मन्यते साधु यद भवान, बेटा सबसे साधु बात कौन सी लगी, सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विघ्न धियाम असद ग्रहात हितवात्म पातम गृहिमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। पिताजी, मैं देख रहा हूं कि इस संसार में असद ग्रहात, असत वस्तु को ग्रहण करने के कारण संसार के सभी लोग सदा समुद्विग्न धिया, इस संसार में सभी लोगों की बुद्धि कैसी है? उद्विग्न है, शांत कोई नहीं है। इस संसार में देखा गया है सब लोग अशांत हैं, यहां से वहां दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ लगा रहे हैं। मैं यहां से कमा लूंगा, यहां से धन प्राप्त हो जाएगा, यहां से सुख मिलेगा। बुद्धि उद्विग्न है, बुद्धि विचलित है, बुद्धि शांत नहीं है। क्यों? प्रहलाद महाराज कहते हैं असत ग्रहात, क्योंकि संसार के लोगों ने असत वस्तु को ग्रहण किया है। इस संसार में दो वस्तु है, सत और असत। सत क्या है और असत क्या है? इस संसार में माया जनित जितनी भी वस्तु है ये सब असत है, ये सब अनित्य है, सब का एक ना एक दिन नाश होने वाला है। इस संसार में केवल दो ही चीज सत्य है, बाकी सब असत्य है। और वे दो चीज क्या है? आत्मा और परमात्मा। इस संसार में दो चीज का ही नाश नहीं होता है, एक तो आत्मा का और एक परमात्मा का। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिदंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कले दंत्यापो, न शोष्यति मारुत। आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न भेदा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह सत चित आनंद है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी सत्य है। तो इस संसार के लोग ये आत्मा और परमात्मा जो सत्य है, इस सत्य को छोड़कर असत ग्रहात, असत वस्तु को ग्रहण कर लिए हैं। वास्तव में हम सबको चाहिए कि हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, आत्म साक्षात्कार करें, परंतु यह छोड़कर हम असत वस्तु को ग्रहण कर लिए हैं। और यह सब छोड़कर असत वस्तु को ग्रहण करने के कारण ही सदा सम उद्विग्न धीय, हमारी बुद्धि विचलित है, अशांत है। वास्तव में भागवत के प्रत्येक श्लोक के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कई सारे ऐसे आचार्य हो गए जिन्होंने एक एक श्लोक को मंथन करके उनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर भाव और टीका लिखी हुई है, अपने मंतव्य लिखे हैं। और जिनमें प्रमुख है श्रीपाद श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जिन्होंने क्रम संदर्भ नामक टीका लिखी हुई है, वीर राघव आचार्य, विजय ध्वज तीर्थ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब लोगों ने एक एक श्लोक के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। और यदि देखा जाए तो ये एक श्लोक के ऊपर 7 दिन की भागवत सप्ताह हो सकती है। एक एक भागवत के प्रत्येक श्लोक में बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। यहां पर देखिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, तत्साधु मनिये असुर वर्य देही नाम है पिताजी, असत ग्रहात, असत वस्तु को ग्रहण करने के कारण सदा सम उद्विग्न धीय, धी का अर्थ है बुद्धि और उद्विग्न का अर्थ है विचलित। इस संसार में सबकी बुद्धि सदा उद्विग्न धीय, सबकी बुद्धि सदा उद्विग्न है। क्यों? क्योंकि असत ग्रहात, असत वस्तु को ग्रहण किए हैं और सत वस्तु को छोड़ दिए हैं। तो इस संसार में सत्य, मैंने पहली बात यह कही कि आत्मा और परमात्मा है। यदि शिव जी को पूछा जाए, शिव जी को तो सब लोग जानते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव जी को एक बार उनकी पत्नी जगत जननी माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? मैं असत ग्रहात के ऊपर बोल रहा हूं। शिव जी की पत्नी जगत जननी माता भवानी पार्वती ने पूछा कि प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? तब शिव जी उत्तर देते हुए कहते हैं, देवी मैं मेरे जीवन का अनुभव तुम्हें बता रहा हूं। इस संसार में सबसे सत्य वस्तु यदि कोई है, शिव जी कहते हैं, उमा कहूं अनुभव में अपना, हे उमा मैं मेरा अनुभव कर रहा हूं, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में सत्य एकमात्र हरि का भजन है, बाकी सब स्वप्न के समान है। सब लोग आएंगे जाएंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। सत्य एकमात्र भगवान श्री हरि का भजन है, शिव जी का कथन है। तो सत्य भगवान की भक्ति है। प्रहलाद महाराज के कहने का दूसरा अर्थ यह है कि संसार के लोग सत वस्तु अर्थात भक्ति को छोड़कर असत वस्तु को ग्रहण किए हैं, इसलिए सबकी बुद्धि उद्विग्न है, विचलित है। हमारी बुद्धि क्यों विचलित रहती है? क्योंकि हमने सत को परमात्मा साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और भगवान की भक्ति को छोड़ दिया है। भगवान की भक्ति छोड़ने के कारण हमारी बुद्धि उद्विग्न है, ये बुद्धि शांत नहीं है और बुद्धि में एकमात्र चिंता है। सब लोग चिंतित हैं। चिंता और शोक ये दो वस्तु हैं। बीती हुई भूतकाल की बात को याद करके जो दुखी हुआ जाता है उसे शोक कहते हैं और भविष्य की बात को याद करके जो दुखी होते हैं उसे चिंता कहा जाता है। और संसार में सब लोग चिंतित हैं, सब लोग। एक संत तो यहां तक कहते हैं ये जो चिंता है, चिंता चिता अपि गरियसी, ये जो चिंता है, चिंता और चिता दो शब्द हैं, आप सब जानते होंगे। चिंता और चिता, चिंता में ची के ऊपर से अनुस्वार निकाल देंगे तो केवल चिता बचता है। चिंता और चिता ये दोनों जलाती हैं। चिता जो होती है वे मरे हुए व्यक्ति को जलाती है शमशान में, चिता जो होती है मरे हुए व्यक्ति को शमशान में जलाती है, परंतु चिंता तो जीवित व्यक्ति को प्रतिदिन प्रति घंटे प्रति मिनट और प्रति सेकंड जलाती रहती है, जीवित व्यक्ति को जलाती है। चिंता चिता अपि गरियसी बहुत दुरू है और चिंता के कारण ही इस संसार में 99.99% रोग आ रहे हैं। सारे रोग चिंता के हैं। आज आप देख रहे हो कई सारे लोग हार्ट अटैक आकर मर रहे हैं चिंता के कारण। चिंता, सब लोग चिंतित हैं, सबकी बुद्धि उद्विग्न है। क्यों? क्योंकि असत ग्रहात। वास्तव में भागवत के प्रत्येक श्लोक को यह याद करना चाहिए, क्योंकि भागवत के श्लोक साधारण नहीं है। जैसे हम हिस्ट्री मैथ्स इत्यादि पढ़ते हैं वैसी किताब नहीं है ये। भागवत साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत के श्लोक साक्षात भगवान के स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण जो आनंदमय है, कृष्ण के बाजू में बैठने से जितना आनंद मिलता है उतना ही आनंद भागवत के श्लोकों के बाजू में रहने से मिलता है। इसलिए प्राय हम भागवत के श्लोकों के अनुसार ही कथा प्रवचन इत्यादि करते हैं, जिसमें बहुत रस और आनंद मिलता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं असत वस्तु को ग्रहण करने के कारण संसार में सब लोग दुखी हैं। और इस बात को और सरल यदि मैं कर दूं, असत वस्तु का अर्थ होता है इस संसार में भगवान, आत्मा और भक्ति को छोड़कर जितनी भी वस्तु है ये सब असत है। पंच महाभूत से बनी हुई देह, गेह, गाड़ी, बंगले, नौकर, चाकर, धन, जो भी है ये सब असत है। असत का अर्थ होता है एक ना एक दिन निश्चित इसका नाश होने वाला है। जिस धन के पीछे हम रात दिन मेहनत करते हैं, एक ना एक दिन वह धन हमें छोड़कर चला जाएगा। और यदि धन हमें नहीं छोड़ेगा तो हम धन को छोड़कर चले जाएंगे। छूटना जरूर है। क्यों? क्योंकि असत है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि असत वस्तु के पीछे हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, तो असत वस्तु के लिए मेहनत करने के कारण, असत वस्तु का ग्रहण करने के कारण सबकी बुद्धि उद्विग्न है और सब लोग दुखी हैं। और इसी के साथ साथ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार में ऐसे लोग घर गृहस्थी का झमेला लेकर बैठे हुए हैं। हितवात्म पातम गृही अंधकूपम, घर गृहस्थी का झमेला लेकर बैठे हैं। बेचारे कितने दुखी हो जाते हैं, देख ब्रह्मचारी लोग कितने खुश हो रहे हैं। सत्य आगे प्रहलाद महाराज इसके ऊपर बहुत सुंदर कहेंगे कि कथम प्रियाया अनुकंपिताया, 5 साल की उम्र है, कुंवारे हो, भजन कर लो, विवाह होने के बाद भजन भजन नहीं होगा, फिर तो फजीहत में फंस जाओगे। तो गृहस्थ जीवन कैसा है, जितने भी गृहस्थ हैं सब लोग अनुभव कर रहे होंगे। देखिए प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक है, परंतु अनुभव कितना तगड़ा है। कहते इस संसार में जितने भी गृहस्थ हैं सब लोग अंधेरे कुएं में पड़े हैं। हितमात्म पातम गृही अंध कूपम, ये गृहस्थ जीवन कैसा है, अंधेरे कुएं के समान है। अंधेरा कुआं आप जानते हैं, हमारे गांव में सभी के गांव में एक कुआं जरूर होता है, गांव के चौराहे पर एक कुआं जरूर, पूरे गांव वाले वहां जाकर पानी खींचते हैं। तो आपने देखा होगा कि गांव में जब कुएं में पानी सूख जाता है तो फिर उस कुएं के पास कोई आता नहीं है, तो कुएं के पास कोई नहीं आने के कारण आजू बाजू में घास उग जाता है, घास उग जाता है और इतना घास उग जाता है कि वे कुएं को घेर लेता है, फिर पता नहीं चलता है वहां कुआं है या नहीं है। तो क्या होता है कि कुआं है या नहीं किसी को पता नहीं है, क्योंकि ऊपर घास जम गया है। और उसी समय वहां पर कई सारे भेड़ और बकरी घास चरने के लिए घूमते रहते हैं, और भेड़ और बकरी देखते हैं कि वहां पर बहुत सुंदर घास है, बहुत हरी हरी घास है, और वह घास खाएंगे हम खुश हो जाएंगे। तो वह हरी घास खाने के लोभ में भेड़ और बकरी वहां जाते हैं, और वहां जाते जैसे ही वह घास खाने का प्रयास करती है तुरंत उस कुएं में धड़ाम करके गिर जाती है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सिर के बल पर गिरते हैं वह भेड़ और बकरे, फूट जाता है सिर। ऐसा ही गृहस्थ जीवन में होता है भाई। जिन लोगों ने विवाह नहीं किया है उसे लगता है कि विवाह कर लेंगे तो बहुत आनंद आएगा, जैसे ये भेड़ और बकरी सोचते हैं कि वहां हरी हरी घास है बहुत आनंद मिलेगा, वैसे ही जिसका विवाह नहीं हुआ है वे सोचते हैं कि विवाह हो जाएगा तो बहुत आनंद है। परंतु जैसे ही विवाह हो जाता है बेचारा दुखी हो जाता है। विवाह के पहले अपनी फियांसी को कहता है कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता हूं, गान 2-3 गाने भी गा लेता है, तेरे बिना मैं नहीं जी सकती, मेरे बिना तुम नहीं जी सकते। और वही व्यक्ति विवाह के बाद क्या कहते हैं, तेरे साथ में नहीं जी सकता हूं। एक कवि बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, जब किसी का विवाह होता है, पति पत्नी जब विवाह करके घर पर आते हैं, तो पहले साल में, विवाह होने के पहले साल में पति बोलते हैं और पत्नी सुनती है। बेचारी पत्नी बहुत आज्ञाकारी होती है, बहुत सेवा करती है शुरू शुरू में। देखो सब लोग हंस रहे हैं, सबका अनुभव है भाई ये तो। तो शुरू शुरू में पहले साल पति बोलते हैं पत्नी सुनती है, हाँ जी जी क्या करना है। विवाह के दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनते हैं, क्या करूं आपके लिए क्या सेवा है। विवाह के पहले साल पति बोलते हैं और पत्नी सुनती है, दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है, और तीसरे साल पति और पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, दोनों का झगड़ा। फिर तो झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होता है। यह है गृह अंध कूपम, गृहस्थ जीवन कैसा है, अंधेरे कुएं के समान है, सिर के बल व्यक्ति पटक जाता है। तो सब लोग विवाह कर लूंगा आनंद आ जाएगा, विवाह करेंगे आनंद आ जाएगा, उस लोभ में जैसे वो भेड़ और बकरी हरी घास खाने के लिए जाते हैं और अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं, वैसे ही संसार के लोग विवाह कर तो लेते हैं, और विवाह में भी कुछ लोग भेड़िया ढसान की तरह, आप जानते हैं भेड़िया ढसान, भेड़ बकरी जो होते हैं वे लाइन में चलते हैं, आगे की बकरी कुएं में गिर गई तो पीछे वाले भी वहीं गिरेगी, तीसरे वाले भी, उसके पीछे सारा टोला वहां गिर जाएगा। वे नहीं सोचेंगे आगे की गिर गई इसलिए मुझे नहीं गिरना है, इसे भेड़िया ढसान कहते हैं। संसार में भी यही चलता है, मेरे पिता ने विवाह किया मुझे भी करना है, आज बाजू वाला कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, ये कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा। सोच कोई नहीं रहा है कि क्यों विवाह करना चाहिए, विवाह करने से क्या मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं विवाह नहीं करना चाहिए, आगे इसका उत्तर आएगा, लेकिन जो विवाह किए हैं अंधेरे कुएं में गिर चुके हैं। प्रभुपाद जी इसके परपट में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि संसार में जितने भी गृहस्थ हैं सब लोग अंधेरे कुएं में गिरे हुए हैं, परंतु कभी कभी हमारे इस्कॉन के भक्त ऐसे कुएं के पास जाते हैं और रस्सी डालते हैं कि भाई गिरे हुए हैं तो रस्सी पकड़कर बाहर आ जाओ। जो लोग गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए इस्कॉन के भक्त जाते हैं, प्रीचिंग करते हैं और गीता और भागवत का ज्ञान सुनाते हैं, परंतु दुर्भाग्य रे दुर्भाग्य इस संसार वालों का। भक्त उनके घर घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और भक्ति का ज्ञान देते हैं, रस्सी डालते हैं कि भाई बाहर निकलो, फिर भी संसार के लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं उस रस्सी को भी नहीं पकड़ते हैं। अब क्या किया जाए, फिर तो उस अंधेरे कुएं में सड़ कर मर जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को उत्तर में दो बात कहे, एक तो असत ग्रह के कारण सबकी बुद्धि उद्विग्न है और पिताजी आप अंधेरे कुएं में पड़े हुए हो, तो आप मुझे पूछ रहे हो कि सबसे अच्छी बात तुम्हें कौन सी लगी, तो पिताजी मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि आपकी बुद्धि इतनी विचलित है, आप अंधेरे कुएं में पड़े हो, इससे तो अच्छा है यह घर छोड़कर वृंदावन चले जाए और वृंदावन में जाकर भगवान श्री हरि और कृष्ण का भजन किया जाए, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा है कि नहीं, ये सब कुछ छोड़कर, ये सब झमेला छोड़कर वृंदावन चले, वृंदावन जाने के लिए। हितवात्म पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यत, कहते वनम गतो, पिताजी वन में चले जाना ये सबसे अच्छी बात है। और वन में जाकर क्या करना है, फकड़ बाबा नहीं बनना है, बाबाजी नहीं बनना है। वनम गतो, वन में जाकर हरिम आश्रय, हरि का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वन में वृंदावन में कौन रहते हैं, हरि रहते हैं। हरि का अर्थ जानते हैं आप, हरि के बहुत अर्थ होते हैं, हरि शब्द अनेक अर्थ, हरि के बहुत अर्थ होते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्य तम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि के बहुत अर्थ होते हैं, परंतु पहला अर्थ यह है कि सर्व अमंगल हरे, हरि हरती इति हरि, हरि उसे कहते हैं जो संसार में सभी लोगों का अमंगल हर लेते हैं। वास्तव में भगवान जो है सभी लोगों के दुख को हर लेते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इसलिए तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी की भाषा में, शिव जी जब रामायण कथा प्रारंभ किए तब भगवान को प्रार्थना करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उषु दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल को प्रदान करते हैं और अमंगल को हर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र द्रव, मेरे ऊपर द्रवित हो, मेरे ऊपर कृपा करो। हरि का अर्थ होता है हरण कर लेना, हर लेना, और हरि का एक अर्थ होता है चोर। हरि माने चोर को संस्कृत में हरि कहते हैं, हरि चुरा लेना, और हमारे भगवान तो सबसे बड़े चोर हैं भाई, क्या नहीं चुराते हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, कहते हैं ब्रज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नवनीत मक्खन चुराते हैं। श्री गोपिका नाम दुकुल पित्त चोरम, यहां तक गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। अरे और सब बात छोड़ दीजिए, भगवान क्या नहीं चुराते हैं। ब्रज वृंदावन के भक्त तो बहुत सुंदर गाते हैं, अरे भाई संसार में हमने बहुत चोर देखे हैं, धन चोरी करने वाले चोर देखे हैं, किसी की गाड़ी चोरी करने वाले चोर देखे हैं, यहां तक गहना चोरी करने वाले चोर देखे हैं, यहां तक सफेद कपड़े में सोफिस्टिकेटेड किडनी चुराने वाले भी चोर देखे हैं, परंतु हमारे ब्रज वृंदावन में जो चोर आया है ये तो हृदय ही चुरा लेता है, हार्ट ही चुरा लेता है। और किसका हार्ट चुरा लिया? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्य ग्रमणम पुरुषम नमामि। ये तो श्रीमती राधा रानी का हृदय चुरा कर ही भाग रहा है, ये चोर नहीं बाबा, ये तो चोरों का सरदार है। और ऐसे चोर के सरदार के चरण में हम प्रणाम कर दिए, प्रार्थना कर दी। भक्तगण बहुत सुंदर गाते हैं। ये चोर ऐसा चोर है, इस चोर की टीम में यदि कोई शामिल हो जाए, इस चोर की टीम में यदि कोई शामिल हो जाए तो फिर वह घर बार छोड़कर दर दर भटकता रहता है, कभी वृंदावन तो कभी मायापुर, कभी जगन्नाथपुरी तो कभी मथुरा तो कभी द्वारका, भटकता रहता है। क्या बताएं, ये अद्भुत चोर हमारे ब्रज वृंदावन में आया है। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी इस चोर का अपने मुंह से नाम ले ले तो अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि। कहते हैं अनेक अनेक जन्मों के जितने भी पाप हैं ये सभी पाप को भस्म कर देता है केवल इनका नाम लेने से। ये चोर नहीं, ये तो चोरों का सरदार है। और ऐसे चोर के सरदार के चरण में हम प्रणाम करते हैं। भगवान वास्तव में चोर हैं, परंतु वे अद्भुत चोर हैं। एक भक्त बहुत सुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इस संसार में सबसे बड़े चोर हो और सब लोग आपको चोर मानते भी हैं, और मुझे पता है कि जो चोर होते हैं उसके पीछे रात दिन पुलिस पड़ी रहती है, और चोर जो होते हैं वे अंधकार ढूंढते रहते हैं कहां अंधेरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं साधुओं को, साधु संत भक्तों को सवेरा बहुत अच्छा लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठेंगे जपा करेंगे, और जो चोर और डाकू होते हैं उसे अंधेरा बहुत प्रिय है क्योंकि चोरी अंधेरे में होती है। तो चोर जो होते हैं पुलिस से डरने के लिए भागने के लिए अंधेरा ढूंढते हैं। एक भक्त भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप चोर हो और आप छिपने के लिए अंधेरा ढूंढ रहे हो, तो प्रभु मेरे हृदय में हजारों हजारों जन्मों से अज्ञान रूपी अंधकार पड़ा हुआ है, मेरे हृदय से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप मेरे हृदय में छिप जाइए, मेरे हृदय में रहिए, आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा, मैं गारंटी मैं दे रहा हूं, क्योंकि हजारों जन्मों का ज्ञान भरा हुआ है। तो इस प्रकार हरिम हरि शब्द के ऊपर मैं कह रहा हूं कि ब्रज वृंदावन में हरि रहते हैं। वृंदावनम परितज्यम पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं जाते, वहां पर नित्य सन्निहितो हरि, वहां नित्य भगवान विराजमान है रहते हैं। इसलिए तो भगवान के भक्त प्रार्थना करते हैं, प्रभु जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा कि संसार में जीव का अंतिम वास कौन सा होना चाहिए, किसी व्यक्ति को अपने जीवन का अंतिम समय कहां पर निकालना चाहिए। तब राय रामानंद उत्तर देते हैं कि ब्रज वृंदावन, क्योंकि वहां पर भगवान विराजते हैं। इसलिए भगवान के भक्त प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि वास देना हो तो वृंदावन में। भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हो गए जिसका नाम था रस खान, मुसलमान भक्त थे, परंतु कहा जाता है कि ऐसे एक मुसलमान भक्त के ऊपर हजारों हिंदुओं को कुर्बान करना चाहे तो कर देना चाहिए। रस खान जो बहुत बड़े भक्त हुए, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रभु यदि आपको मुझे दूसरा जन्म मनुष्य का देना हो तो ब्रज वृंदावन में एक छोटा सा ग्वाल बाल बना देना ताकि नित्य निरंतर कृष्ण का दर्शन करता रहूं। बहुत सुंदर वे गाते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गो कुल गाव के ग्वारन। हे प्रभु यदि मनुष्य का जन्म देना हो तो दूसरा जन्म ब्रज वृंदावन गोकुल में देना ताकि उस ग्वाल बाल के बीच में खड़ा रहकर कृष्ण का नित्य निरंतर दर्शन करता रहूं।
और प्रभु मुझे विश्वास नहीं है, मेरे जीवन में मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि दूसरा जन्म मुझे मनुष्य का नहीं मिलेगा, इसलिए यदि मुझे पशु का जन्म देना हो। कहते हैं जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरावत नंद किलेनु मंजारन। प्रभु यदि मुझे पशु का जन्म देना हो तो मेरा क्या बस है, मेरे बस में कुछ है नहीं। पशु का जन्म देना हो तो नंद बाबा के 900,000 गाय के बीच में एक छोटी सी गाय बना देना, ताकि नित्य निरंतर उस नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता रहूं। परंतु प्रभु मेरे कर्म बहुत फूटे हुए हो, और यदि आपको मुझे पक्षी बनाना हो तो प्रार्थना करते हैं जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदंब की डारन। प्रभु यदि मुझे खग का पक्षी का जन्म देना हो तो यमुना के तट पर कालिंदी के वृक्ष के ऊपर, कहते हैं यमुना के तट पर वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा पक्षी बना देना, ताकि यमुना में स्नान करने के लिए कृष्ण आएंगे और उसका मैं दर्शन करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि प्रभु आप मुझे पक्षी का भी जन्म दोगे, क्योंकि मैं इतना पापी हूं, इतना पापी हूं। मेरे पाप वश, पाप के कारण यदि मुझे पत्थर भी बनाना हो तो कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को जो, कहते यदि पत्थर बनाना हो तो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक छोटा सा पत्थर बना देना, ताकि कृष्ण वहां पर गैया चराने के लिए आए और मैं उसका नित्य निरंतर दर्शन करता रहूं। परंतु जन्म देना हो तो एन केन प्रकारण प्रभु केवल ब्रज वृंदावन में ही जन्म देना। क्यों? क्योंकि वहां पर आप नित्य सन्निहितो हरि, आप नित्य रहते हो। वृंदावन को छोड़कर भगवान एक सेकेंड के लिए भी बाहर नहीं जाते। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने पिता को उपदेश देते हैं, पिताजी आपने मुझे पूछा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि संसार में सबसे अच्छी बात क्या है, इस घर गृहस्थी को, इस अंधे के कुएं को छोड़कर, यह सब कुछ त्याग कर ब्रज वृंदावन में जाकर भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ये सबसे अच्छी बात है। कल्पना करो भक्तों, हिरण्यकश्यपु तीनों भुवन को जीत कर बैठा है, जीते त्वयेकेन जगत त्रयम विभो, भगवान बनकर बैठा है, परंतु उसका 5 साल का बालक उसको चैलेंज कर रहा है कि प्रभु वृंदावन में चले जाओ और कृष्ण की भक्ति करो। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को कहा कि हाथ में माला जोली लेकर वृंदावन चले जाओ, तुरंत हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य पर पक्ष समाहिता, जहास बुद्धि बाला नाम भिज्यते पर बुद्धि भी। हिरण्यकश्यपु सबसे पहले तो ठठा कर हंसने लगा, जैसे असुर लोग हंसते हैं, ठठा कर हंसने लगा कि देखो ये बालक क्या बोल रहा है, हो सकता है कि दूसरे के बहकाने से इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, क्योंकि बालक को क्या होता है, कोई चॉकलेट दे देता है तो वे कुछ भी बोल देता है, तो इसको किसी ने चॉकलेट विकलेट खिलाकर इसकी बुद्धि बिगाड़ दी है। तुरंत सम्यक विधार्यताम बालो गुरु गेहे द्विजाति भी, विष्णु पक्षे प्रति छन्ने न विद्य त्यास्य धीर्यता। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने शंड और अमर को बुलाया, शंड अमर यहां आओ, ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है, मैंने उसे पूछा कि सबसे अच्छी बात क्या लगी, तो ये मुझे हाथ में माला झोली लेकर वृंदावन में भेज रहा है, क्या यही सिखाया है तुमने मेरे बालक को। शंड और अमर तो कांपने लगे, माए बाप हमने ऐसा कभी नहीं सिखाया, तो किसने सिखाया। शरण अमर ने कहा हमने तो कभी ऐसा नहीं सिखाया। त
तब हिरण्यकश्यप ने कहा, हाँ आपने नहीं सिखाया, विष्णु पक्षे प्रति छन्नेर विद्ये त्यास्य धीर्यता, जरूर विष्णु के पक्षी विष्णु के भक्त वेश बदलकर गुरुकुल में आकर इसे सिखाकर चले गए, तुम नहीं जानते हो इस्कोन वाले को, इस्कोन वालों को नहीं जानते हो, वेश बदल बदल कर आते हैं और सबकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं। सत्य बात है, प्रभुपाद जी ने इसके परपट में बहुत सुंदर लिखा है कि यदि प्रचार करना हो तो यदि प्रचार करते समय वेश बदलना भी पड़े तो बदल देना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखे कभी कभी हमारे भक्त प्रचार करने के लिए शिखा भी काट देते हैं, और वर्तमान में भी हमारे वर्तमान आचार्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पाकिस्तान में और दुबई में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं उसके पहले ही जींस पैंट और टी शर्ट पहन लेते हैं। सन्यासी जो दीक्षा देते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है और यहां पर हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि इस्कॉन के भक्त को विष्णु के भक्त को नहीं जानते हो, वेश बदल बदल कर आते हैं। और भक्तों बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस्कॉन के ऐसे बड़े बड़े सन्यासी वेश बदल कर प्रचार करते हैं, और आज इस्कॉन के मंदिर पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी है और रशिया में भी बहुत सारे मंदिर है। भगवान के भक्त की असीम कृपा है। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि नहीं जानते हो, ये लोग वेश बदल कर आते हैं, दिमाग घुमा देते हैं बच्चों का। गृह मानित माहुय प्रहलादम देते याजका प्रसस्य लक्षण या वाचा समपृच्छन्त साम भी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस बालक को मेरी नजरों से दूर करो। तब शंड और अमर प्रहलाद को लेकर दूसरे कक्ष में दूसरे कमरे में लेकर चले गए। फिर शंड और अमर प्रहलाद को प्रेम से पूछते हैं कि वत्स बेटा, बेटा बताओ तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी? बेटा हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप डरो मत, बताओ कौन से सेंटर से आए थे, बीड के थे, पूना के थे कि सोलापुर के थे? यहां पर लिखा है संप्रच्छन्त, संप्रच्छन्त का अर्थ है प्रेम से पूछा, बताओ कौन से सेंटर के थे, कहां से आए थे, केवल नाम दे दो, इशारा कर दो, आपके पिताजी सब संभाल लेंगे। और वे संभालने वाला भी था, परंतु प्रहलाद महाराज कुछ नहीं बोले। फिर अंत में कहा, वत्स प्रहलादम भद्रम ते सत्य कथम मामृषा बालनाथि कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्यय। प्रहलाद तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलना, सत्य ब्रूही माम ऋषा झूठ मत बोलिए, बताओ तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी? अब बुद्धि क्या बिगड़ी थी प्रहलाद की? वास्तव में प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ी नहीं थी, परंतु ये लोगों की दृष्टि में प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ी हुई थी। बताओ किसने बुद्धि बिगाड़ी? बुद्धि भेद परकृतो उताहोते स्वतो भवन, क्या बाहर से किसी व्यक्ति ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ी है या स्वतो भवन या अपने आप बुद्धि बिगड़ गई है? भण्यताम श्रोतु कामानाम, हम लोग सुनने के इच्छुक है, हम लोग सुनने के श्रोतु कामानाम, देखिए क्या कह रहे हैं शंड और अमर प्रहलाद को कह रहे हैं कि हम लोग श्रोतु कामानाम, बहुत कामना उत्पन्न हो रही है सुनने की, बताओ तुम भक्त कैसे बने? देखिए जितनी उत्सुकता शंड और अमर को है उतनी हमें भी होनी चाहिए। शंड और अमर तो कैसे भक्त बने उसे पकड़कर मारना चाहते थे, परंतु हमें उल्टा उत्साह होना चाहिए कि किस प्रकार से भक्त की प्रगति हो रही है जिससे हम भी प्रगति करें। भण्यताम श्रोतुना कामानाम गुरुनाम कुल नंदन, आप तो कुल को आनंद देने वाले हो, नंदन का अर्थ है आनंद। अरे प्रहलाद तुम तो कुल को आनंद देने वाले में से हो, कुल को दुखी करना कब से प्रारंभ कर दिए? भक्ति करके विष्णु की भक्ति करके कुल को दुखी मत करो। ये मूर्ख लोग क्या जाने कुल दुखी कैसे होता है और सुखी कैसे होता है। वास्तव में इस संसार में जो भक्त नहीं है वे भक्ति की महिमा नहीं जानते हैं। जिसके हृदय में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है वे यही सोचते हैं ये भगत हो गया, ये तो बस गया, अभी काम से गया, इसने पूरे कुल को बिगाड़ दिया, ये साधु बन गया। वे लोग नहीं जानते हैं वास्तव में एक कुल में यदि एक बालक भी भक्त बन जाए तो उसका पूरा कुल, एक कुल नहीं, आगे आएगा। प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकश्यपु का जब वध होगा भगवान नरसिंह देव के हाथों से, तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को कहेंगे, बेटा प्रहलाद बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए वो मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मुझे एक चिंता है, यद्यपि मेरे पिताजी बहुत पापी थे, असुर थे, मुझे भजन में बाधा देते थे, परंतु फिर भी आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मेरे पिताजी की सदगति हो, वे गलत रास्ते में न जाए। तो भगवान नरसिंह देव अपने मुख से कहते हैं, बेटा प्रहलाद तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम्हारे कुल की 21 पीढ़ी मेरे धाम में आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा भक्त इस कुल में जन्म लिया है। एक कुल में एक भक्त यदि पैदा हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ी भगवान के धाम में चली जाती है। और ऐसे भक्त को ये शंड और अमर की ये मूर्ख गुरु क्या कर रहे हैं, तुम कुल को दुखी करने वाले हो। ये दुख है या सुख है? भक्त भक्ति की महिमा जानते हैं, ये असुर और पापी लोग भक्ति की महिमा नहीं जानते। और संसार के लोग यदि भक्ति की महिमा नहीं जानते तो ठीक है, वे जो बोले बोलने देना चाहिए। कई लोग हमारे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे माता पिता बहुत डांटते हैं, समाज वाले बहुत चिढ़ाते हैं, समाज वाले गाली देते हैं। तो मैं यही उत्तर देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इस संसार में भक्त की संख्या बहुत कम है और अभक्त और पापी की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे पागल खाने में पागलों की संख्या बहुत होती है, डॉक्टर बहुत कम होते हैं। पागल खाने में पागलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, डॉक्टर बहुत कम होते हैं। वैसे ही संसार में अभक्तों की संख्या ज्यादा है, भक्तों की संख्या कम है। और आप पागल खाने में, हमारा तो अनुभव है, एक प्रभु जी बता रहे थे, पागल खाने में जब डॉक्टर सफेद कपड़ा पहनकर, डॉक्टर जब पागल खाने में एंट्री करते हैं तो सभी पागल खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते, देखो देखो ये पागल आ गए। पागल खाने में जो पागलों को बंद करके रखते हैं वे डॉक्टरों को कहते, देखो ये सफेद कपड़े में आ गए पागल। तो क्या पागलों के कहने से भी पागल हो गए? डॉक्टर जानते हैं कौन पागल है कौन ठीक। ठीक उसी प्रकार सफेद धोती कुर्ता पहनकर जब आप संसार में निकलते हो तो कई लोग कहेंगे, पागल आए, मूर्ख आए, ये आए, वो आए। एक बार क्या हुआ, हमारे राधा गिरधारी मंदिर में किसी ने एम्बुलेंस डोनेशन में दिया। अब हमारे इस्कॉन में तो जो भी आए ले लेते हैं। एम्बुलेंस आया तो ठीक है, चलो एम्बुलेंस दे दो। एम्बुलेंस डोनेशन में दिया, फिर वो एम्बुलेंस तो कैसे यूज, क्या यूज करे? तो वो एम्बुलेंस हम लोग नगर संकीर्तन करने के लिए यूज करने लगे। तो एक दिन नगर संकीर्तन करने के लिए हाईफाई एरिया में हम लोग गए और उस एम्बुलेंस में सब लोग धोती कुर्ता पहनकर सब लोग उसमें भर दिए थे। और उस हाईफाई एरिया में जब एम्बुलेंस खड़ी रखी तो सब लोग देखे, एम्बुलेंस क्या, क्यों, क्या, क्यों करने, क्या करने के लिए आई? एम्बुलेंस खड़ी रही, दरवाजा खुला और अंदर से सब धोती कुर्ता में भक्त निकले और निकलकर नाचने लगे। तो सब लोग को लगा कि पागल खाने की एम्बुलेंस यहां आकर खुल गई। संसार के लोगों को भले लगे कि ये पागल हैं, परंतु वास्तव में भक्त ही जानते हैं कि कौन पागल कौन मूर्ख। ये हमें नहीं, हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु को भी सब पागल कहते थे, मूर्ख कहते थे, परंतु महाप्रभु बहुत सुंदर उत्तर देते थे। जानना है क्या कहते थे? चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से और सभी जगह पर हरी हरी करते हुए, कृष्ण कृष्ण करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जब चलते थे तो संसार के लोग कहते थे, ये क्या, ये बावरा, ये पागल हो गया है। वास्तव में भगवान का नाम किसी एक जगह पर बैठकर लेना चाहिए, ये नाचते कूदते हुए नाम ले रहा है। कई लोग उस पर थूकते थे, पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, परंतु महाप्रभु कुछ नहीं कहते थे। एक बार तो किसी ने पूछ दिया कि ये पागलों की तरह क्यों नाच रहे हो, गा रहे हो, किसी एक जगह पर कोने में बैठकर ये सब करना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं, क्या बताऊं, गुरु मोहे मूर्ख जानी करी ल शासन। चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते थे कि मैं मेरे गुरु जी के पास गया और गुरु जी के पास जाकर मैंने कहा कि गुरु जी आप मुझे वेद और शास्त्र का ज्ञान दो, मुझे शास्त्र सिखाओ। तो गुरु मोहे मूर्ख जानी करील शासन। गुरु ने देखा कि ये तो मूर्ख है, गुरु ने मुझे मूर्ख कह दिया और कहा कि तुम शास्त्र वास्त्र की विद्या नहीं सीख सकते हो, एक काम करो तुम महामंत्र जपो। गुरु जी ने मुझे शास्त्र से इनकार कर दिया और कहा कि महामंत्र जपो, हरे कृष्ण महामंत्र। मैंने कहा ठीक है, तो मैं महामंत्र लेकर फिर जपने लगा। और जैसे जैसे मैं महामंत्र जपने लगा, क्या पता अद्भुत प्रभाव इस महामंत्र का, मैं तो संसार से विरक्त होता गया, पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो गया, संसार को भूलने लगा। फिर से मैं गुरुजी के पास गया और कहा है गुरुजी, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, ये आपने कैसा मंत्र दे दिया, न जाने इसमें कितना बल है। जपीते जपीते नाम करील पागल, जैसे जैसे मैं ये नाम जप रहा हूं, नाम जपते जपते मैं पागल सा होता जा रहा हूं, संसार के लोग मुझे पागल कहते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि अब ये महामंत्र आपको ठीक तरह से फला, बस अब ये महामंत्र जपते रहो, संसार के लोग पागल कहे तो वे सुनते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उस दिन से लेकर आज तक बस मैं ये महामंत्र जपता रहता। वास्तव में महाप्रभु को कोई ऐसे गुरु गुरु नहीं मिले थे, परंतु लोगों को इस प्रकार से उत्तर देते थे। तो मैं क्या कर रहा था, अच्छा कुल नंदना। संसार के लोग भजन करने वाले को यदि दो पांच शब्द कह भी देते हैं तो उसमें सुनना नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, कहते हैं गांव में आपने देखा होगा ये भागवत, जो गांव में रहे वे बहुत जल्दी समझ पाएंगे क्योंकि भागवत में 99% गांव के ही दृष्टांत है। गांव में आपने देखा है, गांव में यदि कोई हाथी महावत हाथी लेकर आए तो गांव के सारे कुत्ते जमा हो जाते हैं और हाथी के सामने भौं 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 करने लगते हैं। यहां तक हाथी के सामने इतना भौंकते बंद नहीं होते हैं और हाथी चलता है कि वो घर के दरवाजे के पास पीछे पीछे घर के अंदर जाते जाते वे भौंकता रहता है। फिर भी हाथी अपनी धुनकी में मद मस्त होकर चलता रहता है, वे कुत्ते को पूछने नहीं जाता है भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। यदि हाथी कुत्ते को जवाब देने लगे तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो कुत्तों को भौंकने देना चाहिए और हमें हमारी मस्ती से चलना चाहिए। हरे कृष्णा शंड और अमर प्रहलाद महाराज को पूछ रहे हैं, प्रहलाद आप तो कुल को आनंद देने वाले हो, बताओ आपकी बुद्धि किसने बिगाड़ी। हमारी भाषा में तो यह है कि प्रहलाद की बुद्धि किसने सुधारी, परंतु असुरों की भाषा में क्या है, तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी बताओ। तो देखो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं। श्री प्रहलाद वाच, प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, पर स्वशेत असद ग्रहात पुंसाम यन माया कृत विमोहित ध्याम दृष्टम तस्मे भगवते नमः। यहां पर गुरुओं ने पूछा कि तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी। प्रहलाद महाराज कहते हैं बुद्धि देने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अब किसको गुस्सा नहीं आएगा। प्रहलाद यहां गुरुओं ने पूछा कि तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो बुद्धि देते हैं बुद्धि मताम अस्मी, बुद्धि देने वाले भगवान के चरणों में तस्मे भगवते नमः, उस भगवान को प्रणाम करता। शरण अमर ने कहा भाई सीधा सीधा जवाब दो, बुद्धि किसने बिगाड़ी। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, स यदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धि विविदत्यदे अन्य एष तथान्योहम इति भेद गता सती। मेरी बुद्धि उसने बिगाड़ी है जो सबकी बुद्धि को ठीक करते हैं, समझ गए। प्रहलाद ने ऐसा उत्तर दिया, मेरी बुद्धि उसने बिगाड़ी है, कहते हैं कि पशु भेद गता सती, जिसकी बुद्धि पशु बुद्धि हो गई है। पशु बुद्धि जानते हैं किसे कहते हैं, पशु बुद्धि। पशु क्या करते हैं, प्राणी पशु लोग क्या करते हैं, आहार निद्रा, भय और मैथुन, ये चार के अलावा और कुछ काम करते हैं? वे आहार भोजन खाते हैं, निद्रा सोते हैं, भय का अर्थ डरते हैं और मैथुन का अर्थ बच्चे पैदा करते हैं। पशु में चलो कुत्ते को ही ले लीजिए, जो सबको सबके साथ पहचान होगी आपकी, क्योंकि हमारे देश में गाय का प्रमाण कम होते जा रहा है, कुत्तों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। यद्यपि पालने लायक गाय है, परंतु गाय को छोड़कर कुत्ते को पालते हैं। वास्तव में भारत आर्य वर्ष की संस्कृति बहुत गिरती जा रही है। गाय का पालन, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि जीवन में सुखी होना है तो थोड़ी सी जमीन और गाय यदि हो जाए तो सुखी होकर आप अपना जीवन बिता सकते हो। परंतु संसार के लोग मानते हैं कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं, परंतु प्रगति कुछ नहीं है। जमीन आज कहां है? यहां बीड़ में तो मान लो हो सकती है, परंतु बंबई में तो एक फुट जमीन लेना पसीना निकल जाता है। लैंड की बात छोड़ दीजिए, फ्लैट में भी, बिल्डिंग में भी जमीन नहीं मिल रही है, जमीन नहीं है। और गाय जिसको पालना चाहिए उसे काट कर खा रहे हैं संसार के लोग, क्या पालेंगे? और मानते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। हमारा भारत महान, क्या खाक महान है। आप कल्पना करो कि हमारा भारत महान था, है नहीं? सब लोग कह रहे हैं कि हमारा भारत महान है, क्या हम लोगों ने क्या प्रगति की? बस यही प्रगति की कि धीरे धीरे हम हमारे कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, प्रगति हो रही। आजकल स्त्रियां जितने कम कपड़े पहनेंगी उतना ज्यादा प्रगति। आप 500 साल पीछे चले जाइए, पहले के राज राजेश्वर रानियां इतने कपड़े पहनती थी कि उनके शरीर का एक अंग भी दिखता नहीं था। परंतु आज जितने छोटे कपड़े होते जा रहे हैं उतना भाव ज्यादा है और उतनी प्रगति कर रहे हैं। क्या है प्रगति है? आज से 50-100 वर्ष पहले, अब देखिए हम क्या प्रगति कर रहे हैं। आज से 50-100 वर्ष पहले ये जो सब्जी इत्यादि जो थी, जो खाने की चीज होती है, ये दुकान में बिकती थी और बूट चप्पल ये सब रास्ते में बिकते थे। परंतु आज जो पेट में डालने की, भगवान को ऑफर करने की जो सब्जी, फूल, फल, फ्रूट इत्यादि रास्ते में मिलेंगे और जूते एयर कंडीशन शोरूम में मिलेंगे, पांव में पहनने के जूते ऐसे शोरूम में मिलेंगे और खाने की चीज रास्ते में मिलेगी, क्या ये प्रगति है? ज्यादा दूर की बात नहीं, केवल 50-100 साल की बात है। 50-100 साल पहले हमारे गांव के लोग घर पर भोजन करते थे और बाहर जाते थे दो नंबर के लिए। भोजन घर पर करते थे और लैट्रिन इत्यादि बाहर करते थे। परंतु आज भोजन बाहर होटल में करते हैं और जाते हैं घर पर, क्या ये प्रगति है? अपने आप को प्रगति, प्रगतिशील कर रहे हैं हम, प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या है प्रगति? प्रगति नहीं है। पशु बुद्धि की बात कर रहा था, आहार निद्रा भय में, कहां से मैंने ये टॉपिक उठाया? देखिए कलयुग के वक्ता की बुद्धि है। व्याख्या करने में सब ठीक है, पशु बुद्धि के ऊपर मैं कह रहा था कि संसार में कुछ लोगों की पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि का अर्थ है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अच्छा, मैं कुत्ते के ऊपर कह रहा था, कुत्ते से चला गया गाय के ऊपर, गाय से फिर प्रगति में चला गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कुत्ते को ही ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल। कुत्ता क्या करता है? आहार भोजन करता है, निद्रा सोता है, भय, कुत्ते के पास पत्थर लेकर जाओगे तो भाग जाएगा, डरता है, और मैथुन बच्चे पैदा करता है। ये चार के अलावा और कुछ कार्य करता है? चलो कुत्ते को बाजू में रखो, अब मनुष्य को ले लो। मनुष्य क्या करता है? आहार, खाना खाता है, निद्रा सोता है, भय डरता है, किसी ना किसी से तो जरूर डरता है, और मैथुन बच्चे पैदा करता है। इसके अलावा कुछ करता है मनुष्य? कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो ऑफिस में जाते हैं। अरे स्कूल कॉलेज और ऑफिस में जाने के बाद अल्टीमेटली आप क्या करोगे? धन कमाओगे, इसलिए तो स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं। ऑफिस में क्यों जा रहे हैं? धन कमाने के लिए। और वह धन की गति कहाँ होती है? वह धन या तो आप अच्छा घर लोगे जहां पर सोना है रहना है, या तो भोजन लोगे, या तो विवाह करोगे, बच्चे पैदा करोगे। धन की यही गति है। तो अल्टीमेटली मनुष्य भी आहार निद्रा भय और मैथुन कर रहा है। तब आप मुझे यह बताओ, एक कुत्ता भी आहार निद्रा भय मैथुन करता है, एक मनुष्य भी आहार निद्रा और भय मैथुन करता है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि मनुष्य जो है थोड़े अच्छे लेवल पर भोजन करता है तो थाली में भोजन करता है, कुत्ता रास्ते में कर लेता है, बाकी और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो बताइए एक मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? महाभारत ग्रंथ में 100,000 श्लोक है, उनमें कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणा। पशु और मनुष्य में यह सब समान वस्तु है, परंतु मनुष्य जीवन प्राप्त करके धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मे न विहीन पशु भैर समानम। परंतु मनुष्य को भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है जिसके द्वारा वह धर्म का पालन कर सकता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं, मनुष्य रूपेण प्राणी चरंती, मनुष्य रूप में वह पशु है, वह कुत्ता है जो धर्म का पालन नहीं करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत प्रमाण है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके धर्म का पालन हम सबको करना चाहिए, परंतु कुछ लोग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पशु बुद्धि कहा जाता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिनकी कृपा से पशु बुद्धि भी ठीक हो जाती है, ऐसे भगवान के द्वारा मेरी बुद्धि को बिगाड़ा गया है। समझ गए गुरुजी? गुरुजी ने कहा नहीं समझा, ठीक से बताओ। प्रहलाद को कहा कि ठीक से बताओ, तब प्रहलाद महाराज अब ठीक से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सएष्य आत्मा स्वपरेत्य बुद्धि भी दुरत्यानु करुणो निरूप्यते मुह्यन्ति यर्थ मनी वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेश भिनत्ति मे मति। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे गुरुजी, आप यही पूछ जानना चाहते हो कि मेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी, तो सुनो। सएष्य आत्मा, जिस भगवान की माया से संसार में सब लोग मोहित है, जिस भगवान की माया से मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, देवताओं की बात छोड़ दीजिए, देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ इंद्र और ब्रह्मा है, ये इंद्र और ब्रह्मा भी जिसकी माया से मोहित है, उस भगवान ने मेरी बुद्धि को बिगाड़ा है। बताओ क्या करना है आपको? क्या कर लोगे? जिस भगवान, भगवान की बात छोड़ दीजिए, जिस भगवान की माया से संसार में सब लोग मोहित है, सत्य बात है। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, भगवान की माया से इंद्र और ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, तो मनुष्य की क्या बात की जाए? चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है, एक बार ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला। एक समय की बात, ब्रह्मा जी को थोड़ा अहंकार सा हो गया कि मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का सर्जन कर रहा हूं। तो भगवान की इच्छा हुई कि भक्त का अहंकार दूर कर दूं। एक बार ब्रह्मा जी घूमते घूमते द्वारका पहुंचे, द्वारका के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्यों नहीं जा सकता हूं, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं? द्वारपाल ने पूछा नहीं जानता है, हम नहीं जानते आपको, मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा हूं, जाओ बताओ कृष्ण को ब्रह्मा आया है। द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास गए, कहा कि प्रभु द्वार पर ब्रह्मा आए हैं, कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, तो क्या हम भेज दे उसे? कृष्ण ने कहा हम नहीं भेज, उसे मत भेजो, उसे जाकर पूछो कौन से ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल आए, ब्रह्मा जी को कहे कि भाई आप कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी लाल पीले हो गए, इस संसार में 15-20 ब्रह्मा है, एक ही ब्रह्मा है, बताओ चार मुख वाला ब्रह्मा आया है। द्वारपाल फिर से गए, फिर से जाकर कहा कि प्रभु वो कह रहे हैं कि चार मुख वाले ब्रह्म आए हैं। अच्छा चार मुख वाले आए, भेज दो उसे अंदर। ब्रह्मा जी जैसे ही भगवान के उस द्वारका में प्रवेश किए, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ऑलरेडी वहां पर 8 मुख वाले ब्रह्मा खड़े थे, कुछ 12 मुख वाले ब्रह्मा खड़े थे, कुछ 24 मुख वाले ब्रह्मा खड़े थे, कोई 50 मुख वाले, कोई 100 मुख वाले, कोई 500 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा को देखकर ये ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर गए। अरे बाप रे बाप, मैं तो सबसे छोटा ब्रह्मा हूं, ये तो यहां पर तो मेरे बाप खड़े हैं, 1000 मुख वाले खड़े हैं। ब्रह्मा जी गिन गिन कर थक गए। तब ब्रह्मा जी को पता चला कि मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूं। ये सत्य है, इस संसार में जितने ब्रह्मांड हैं, कहते हैं भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो उनके रोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, तो सभी ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा होते हैं। तो भक्तों, हमारा जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसलिए इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए केवल ब्रह्मा जी को 4 मुख की जरूरत है। हमारे ब्रह्मांड की तुलना में और जो ब्रह्मांड है हमारे से हमसे बड़े हैं, इसलिए किसी ब्रह्मा को 8 मुख की जरूरत है, किसी को 10 मुख की, किसी को 50, किसी को 500, किसी को 1000। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी भी कभी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। संसार का जीव मोहित हो जाए, ये कौन सी बड़ी बात है। महारानी कुंती अपनी प्रार्थना में बहुत सुंदर कहती हैं कि प्रभु, यद्यपि आप इस संसार के सभी कण कण में हो, अंतर बहिर वस्तितम, आप इस संसार के अंदर भी हो बाहर भी हो, जीव के अंदर परमात्मा के रूप में हो, बाहर ब्रह्म के रूप में, अपने धाम में, मंदिर में, सब जगह पर विराजमान हो, परंतु फिर भी न लक्ष्य से इस संसार के लोग आपको जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माया जवनी काचनम ज्ञाध्योक्षजम व्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। क्योंकि संसार के लोग माया में फंसे हुए हैं, माया नाम का पर्दा उनकी आंख और ज्ञान के आगे है, इसलिए संसार के लोग आपको नहीं जान सकते। संसार की क्या बात की जाए, जन्माधस्य यतोन व आदि तरत चार्थेषु विज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य। कहते के बड़े बड़े ज्ञानी महर्षि विद्वान संत साधु देवता इंद्र चंद्र ब्रह्मा और शिव जी भी कभी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम जैसे तुच्छ जीव मोहित हो जाए इसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरु जी, शरण और अमर जी, बड़े बड़े ब्रह्मा की बुद्धि भी बिगड़ जाती है, तो मेरी बुद्धि बिगड़ गई तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दे दिया, तो भगवान ने मेरी बुद्धि बिगाड़ी है। और सत्य बात बताऊं गुरुजी, गुरुजी ये बुद्धि मेरी बिगड़ी हुई नहीं है, भगवान श्री विष्णु में, भगवान श्री कृष्ण में इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है, कृष्ण में इतना गुण है, इतना गुण है, उसका रूप इतना सुंदर है, न चाहते हुए भी मन और बुद्धि वहां चली जाती, न चाहते हुए भी। प्रहलाद महाराज अपने गुरु को दृष्टांत देते हैं, यथा ब्राह्म्य तयो ब्रह्मन स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा में भिद्यते तेश चक्र पाणी यदिच्छया। उस चक्र पाणी हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण और विष्णु इतने सुंदर है, दृष्टांत देते हैं जैसे लोह चुंबक, जानते हैं ना चुंबक, जैसे चुंबक लोहे को तुरंत आकर्षित कर लेता है, चिपक चिपका लेता है, वैसे ही भगवान में इतना रूप और इतने गुण है कि न चाहते हुए भी मेरा मन और बुद्धि चिपक जाती है उसमें। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, वास्तव में कृष्ण अद्भुत, कृष्ण सर्वाति सुंदर है, क्या बात करे कृष्ण की। एक कवि तो बहुत सुंदर कहते हैं, संसार में केवल कृष्ण ही सुंदर है, बाकी सब छछुंदर है। ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, ये जो भी आजकल के जो भी होंगे, हम कहते हैं हीरो 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 एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब छछुंदर है। सुंदर सर्वाति सुंदर, सर्वाकर्षक एकमात्र कृष्ण है। अद्भुत सुंदरता, क्या सुंदरता, हजारों हजारों गोपियां जिसके पीछे लट्टू हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिस कृष्ण की छटा को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। हमारे ब्रज वृंदावन में तो कृष्ण के जो सखा है, मधुमंगल सुदाम इत्यादि, कृष्ण को गाली देते हैं, अरे सारे, वास्तव में वे लोग गाली दे सकते हैं, हम साधन भक्ति में है, हमें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। महाप्रभु भी कृष्ण को लंपट कहते हैं शिक्षाष्टकम में। खैर, कृष्ण के जो सखा है, कृष्ण के सखा कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण अरे सारे, सारे अर्थात ब्रज की ये गाली है, साले, अरे सारे तू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रख दिया है, सत्य बात है। कृष्ण इतने सुंदर थे, ब्रज वृंदावन में किसी को चैन से सुख नहीं लेने देते थे, जीने नहीं देते थे। गोपिया रात दिन ब्रह्मा जी को प्रार्थना करती थी, ब्रह्मा जी आप हम पर कृपा करें कि कुछ क्षण के लिए हम कृष्ण को भूल सके, ताकि घर का काम ठीक से हो, क्योंकि यह सांवला सरोना यह बाल कृष्ण का रूप जब मेरे हमारे सामने आता है, हम कुछ ठीक से कर नहीं सकते। आज तो हमें भगवान को यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि कृष्ण की याद आए, और गोपिया भुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए कृष्ण को भूल सके। गोपिया भी, लता पता पेड़ भी कृष्ण की राह देखते थे, कब कृष्ण आएंगे। और आम का वृक्ष जब कृष्ण को देखता तो उसकी डाली बिल्कुल नीचे झुका देता। और यहां तक बछड़े और गाय भी, कृष्ण जब अपनी बंसरी बजाते, भागवत में वेणु गीत में वर्णन है, कृष्ण जब अपनी बंसरी बजाते हैं तो जितने भी गाय और बछड़े घास खाने के लिए तैयार हो चुके थे, वे घास को खा नहीं सकते थे, न तो निगल सकते थे न उगल सकते थे। चित्रवत गोस्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि चित्र के समान, एक फोटो के समान खड़े रह जाते थे बंसरी सुनने के लिए। यहां तक कि वहां पर जड़ वस्तु चैतन्य हो जाती थी, चेतन वस्तु जड़ हो जाती थी। कृष्ण जब बंसरी बजाते थे तो नदियों का प्रवाह पत्थर के समान रुक जाता था, और पत्थर पानी की तरह पिघलने लगता था। आज भी आप कहेंगे प्रभु जी फेंकने लगे अभी, आज भी ये प्रमाण वृंदावन चरण पहाड़ी एक नहीं तीन तीन जगह पर जिस पत्थर के ऊपर खड़े रहकर कृष्ण ने वेणु बजाई है, आज भी कृष्ण के चरण चिन्ह उस पत्थर के ऊपर है। तो कृष्ण जब बंसरी बजाते हैं, कृष्ण अपनी सुंदरता से सबको मोहित कर दिए हैं, सबको परेशान कर दिए। ब्रज वृंदावन के सखा कृष्ण को गाली देकर कहते हैं, अरे सारे तू लड़का बना है तो लाखों लोगों के नाक में दम करके रखा है, भगवान ने तुझे लड़की बनाया होता तो लाखों लोग गला काट कर मर गए होते तुझे प्राप्त करने के लिए, कट जाते गला करोड़न के, करोड़ों लोग गला काट कर मर गए होते। अच्छा है भगवान ने तुझे लड़का बनाया है। बहुत सुंदर थे कृष्ण, स्वाभाविक आकर्षित हो जाते। कोई व्यक्ति यदि एक बार भी कृष्ण के सामने देख लिया, बस गया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, कृष्ण का गुण इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति उसे आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता है। तो षण और अमर का प्रश्न यह है, यदि तेरा कृष्ण इतना सुंदर है, यदि तेरा कृष्ण का गुण इतना आकर्षित है, तो हम क्यों आकर्षित नहीं हो रहे हैं? हमारे लिए भी यह प्रश्न है ना, कि यदि कृष्ण इतने आकर्षित है तो प्रहलाद महाराज की तरह हमारी भक्ति इतनी क्यों नहीं हो रही है? षण और अमर का भी यही प्रश्न है, तो हम क्यों नहीं चिपक रहे उनके प्रति, जैसे तुम चिपक गए उस लोहे के, उस चुंबक के प्रति, हम क्यों नहीं चिपक रहे हैं? संसार के सब लोग कृष्ण के प्रति इतना क्यों नहीं चिपक रहे हैं? प्रहलाद महाराज कहे, मैं क्या करूं, आप सबके ऊपर झंक लग गया है, आप सबके लोहे के ऊपर झंक लग गया है, इसलिए आप चिपक नहीं रहे हो। सत्य बात है, लोहे के ऊपर जब झंक लग जाता है तब वे चुंबक के प्रति चिपकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन और बुद्धि के ऊपर जंग पकड़ लिया है, अर्थात हमारे मन और बुद्धि के ऊपर अज्ञान का अंधकार लग गया है, पाप का बोझा लग गया है, इसलिए कृष्ण के प्रति हमारा मन और बुद्धि आकर्षित नहीं हो रहा है। हमारा जो ये चित है, मन बुद्धि और अहंकार, ये सब मेला हो चुका है। यदि उस जंग को निकालना है, अभी हमारे घर पर भी कैसी लोहे की फ्रेम को या हमारी साइकिल में या मोटरसाइकिल में या कार में जंग पकड़ लिया हो तो उसे निकालने के लिए पाउडर मिलता है ना, पाउडर आप घिसोगे तो वह ठीक निकल जाता है। तो प्रश्न होता है कि हमारे मन बुद्धि अहंकार के ऊपर जो जंग पकड़ा है उसे निकालने के लिए कोई दवा है, कोई दवाई है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ, कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावत जीवन। चित रूपी दर्पण को यदि मार्जन करना है, यदि हमें हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाना है, हृदय के पाप को दूर करना है, तो एकमात्र साधन है भगवान का नाम। यदि हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हजारों हजारों जन्म से जो जंग पकड़ लिया है वह जंग साफ हो जाएगा, और जैसे ही वह जंग साफ हो जाएगा तुरंत भगवान के प्रति हमारी मन बुद्धि और अहंकार आकर्षित हो जाएगा। फिर कृष्ण से दूर हमारा मन और बुद्धि कभी नहीं जाएगा। तो इस चित मन बुद्धि अहंकार को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे तो गुरुजी यह बात है, कृष्ण में इतनी सुंदरता है, वे इतने आकर्षक है, इसलिए मेरी भक्ति मेरा खिंचाव उनके ओर है। श्री नारद मुनि इस कथा को आगे बढ़ाते हैं, युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। एतावद ब्राह्मण योक्त्वा वीर राम महामति तम सन्नी भरतस्य कुपित सुदीनो राज सेवक। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बोलकर शांत हो गए, वीर राम शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। और यहां पर प्रहलाद महाराज को महामति कहा जा रहा है, महाबुद्धिमान। प्रहलाद महाराज की बुद्धिमानी क्या थी? वे शांत हो गए। तो शांत रहना ये बुद्धिमानी है? कभी कभी कुछ लोगों के सामने शांत रहना यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बोलना भी ऐसे लोगों के सामने चाहिए जो लोग कुछ सुधर सके। कभी कभी हमारे प्रचारक ऐसे लोगों के साथ मुठभेड़ हो जाती है, सामने वाले को केवल तर्क ही करना है और ये बेचारे उसे भक्त बनाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। न तो वो भक्त बनता है न तो ये बेचारे भक्त बना सकते हैं, दोनों का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट न करना यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। प्रहलाद महाराज को यहाँ पर महामति कहा जा रहा है क्योंकि वे शांत हो गए। तम सन्निवर्तस्य कुपित सुदिनो राज सेवक, वे राजा के सेवक। देखिए कितना तुच्छ बात है। राज सेवक, किसे राज सेवक कह रहे हैं? शंड और अमर को। कौन थे? गुरु थे, गुरु की पोस्ट पर थे, परंतु वे क्या थे? राज सेवक। आज के गुरु की तरह। वास्तव में गुरु का अर्थ होता है बड़ा, लघु का अर्थ होता है छोटा। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, गुरु जो होते हैं वे राजा से भी बड़े होते हैं, परंतु ये शंड और अमर्थ राजा के हाथ से बीक चुके। जैसे आजकल के गुरु लोग, वास्तव में आज से पहले के जमाने में कोई विद्यार्थी गुरु के पास जाता था और गुरु से शिक्षा विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देता था, परंतु आज गुरु के पास जाने से पहले ही गुरुजी कहते हमारी ये फीस है, इतना पैसा दोगे तब पढ़ाया जाएगा। हम सब बदल गया है। पहले के जमाने में विद्यार्थी गुरु के पास जाते थे, आज ट्यूशन टीचर घर पर आती है और वह भी सेवक बन जाते हैं। ये आजकल के गुरु नौकर बन गए, इसीलिए किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है। देखिये यहां पर राज सेवक कहा जा रहा है, ये शंड और अमरक राजा के सेवक थे, क्या ज्ञान देंगे? और क्या कहे? तुरंत प्रहलाद महाराज ने जब ऐसा कहा कि कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के कारण और मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं, ये दोनों क्रोधित हो गए और कहा आनीय तामेरे वेत्रम अस्माकम यशस कर, जरा वो लकड़ी तो लाओ, लकड़ी से इसे पीटूंगा। कुलंगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थो स्योदितोदम, ये तो कुल का आग लगाने वाला उत्पन्न हुआ है। कुल अंगार, अंगार का अर्थ होता है आग लगाने वाला। ये देतियों के कुल में, देतियों में के कुल में आग लगाने वाला पैदा हुआ है, जरा लकड़ी लाओ इसको मार पीट कर सीधा करूंगा। देते ये चंदन वने जातो यम कंटक द्रुम, ये मूर्ख बालक देत्य रूपी चंदन वन में, देखिए ये शंडरमर क्या कर रहे हैं। देतियों का कुल कैसा है, कहते चंदन के समान, अपने देत्य को चंदन के साथ उपमा दे रहे हैं। और प्रहलाद को क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि देत्य का कुल जो चंदन के समान है, ये चंदन के जंगल में बबूल का वृक्ष कैसे पैदा हो गया, काटो काटो इसको, काटो मारो इसको। इस प्रकार से शंड और अमर क्रोधित हुए। इति तम विविधो पाए विषयम तर्जनादि भी प्रहलादम ग्रहयामास त्रिवर्ग होश्य उपादनम। प्रहलाद को बहुत बहुत कहा कि किसने बताया, प्रहलाद ने उत्तर नहीं दिया। प्रहलाद तो जानते थे नारद मुनि ने सब सिखाया, परंतु नाम नहीं दिए। आजकल का कोई बालक हुआ होता तो कह देता भाई इसकोन में श्रुति परायण प्रभु ने हमें सिखाया, फिर भले श्रुति परायण प्रभु को डंडा मिले। आजकल के बालक की तरह नहीं थे, अपने गुरु का नाम नहीं लिए। तो इस प्रकार से बहुत बहुत उपाय किए, तर्जन आदि भी बहुत डांटे, फिर भी प्रहलाद महाराज कुछ नहीं बोले। और फिर प्रहलाद को कहा कि ठीक है चलो, अब 2 महीना तक नहीं रहना है घर पर, यदि रहोगे तो तुम्हारा बाप हम पर चढ़ जाएगा, एक काम करो चलो गुरुकुल में। प्रहलाद को फिर से गुरुकुल में लेकर गए और शिक्षा प्रारंभ की। कैसी शिक्षा थी, कहते हैं धर्म अर्थ और काम की शिक्षा, मोक्ष की शिक्षा नहीं देते थे। कैसे धन कमाना चाहिए, कैसे शरीर को टिका कर रखना चाहिए, यह सब शिक्षा देते थे। वास्तव में आज भौतिक जगत में ऐसे ही शिक्षा सब जगह दी जा रही है, केवल दैहिक लेवल के ऊपर। ये शरीर को किस प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए, यही शिक्षा सभी यूनिवर्सिटी सब जगह पर दे रहे हैं, और ये शिक्षा भी ठीक से नहीं दे रहे हैं। मैं खुद पढ़ चुका हूं 3री कक्षा में हिस्ट्री में सब्जेक्ट में, क्या पढ़ा था, मुझे पढ़ाया गया था कि ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य बंदर से बने हैं। पहले हम सब लोग बंदर थे, हमारे बाप दादा बंदर थे, दूसरे शब्दों में गाली देते हैं ये लोग कि आपके बाप दादा बंदर थे, फिर पूंछड़ी पूंछ चली गई, फिर बाल भी निकल गए, फिर वो बंदर 4 पैर से 2 पैर पर चलने लगा और धीरे 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 इतना सोफिस्टिकेटेड मनुष्य बन गया। ये आज के बालकों को सिखाया जाता है स्कूल में, परंतु शास्त्र क्या कहता है, मनुष्य बंदर से नहीं आए, मनुष्य की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी की भुजा से प्रकट हुए और मनु और शत्रुपा से मनुष्य का जन्म हुआ, इसीलिए मानुज कहा जाता है। मनु से जन्म होने के कारण मानुज, और मनुष्य नाम भी मनु महाराज से हुआ, ये क्यों नहीं समझ रहे, बस केवल बंदर से आए हैं और सबको पढ़ाया जा रहा है। वास्तव में ये डार्विन का सिद्धांत अमेरिका में टोटली बैंड है, परंतु आज भी भारत में यह सिखाया जाता है। जिस भारत में भागवत का अवतरण हुआ, जिस भारत में भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, उस भारत में आज भी ऐसी शिक्षा दी जा रही है। तो भौतिक जगत की भौतिक शिक्षा वास्तव में अज्ञान अविद्या है, इससे तो अच्छा है बालक पढ़े ही नहीं, पढ़े ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि यदि हम हमारे बालक को नहीं पढ़ाएंगे तो वे आगे चलकर क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। कौन भूखे मरा, ये विद्या नहीं है, संसार में भागवत और गीता की विद्या होनी चाहिए, और ऐसी विद्या से हम दुखों से दूर हो सकते हैं। बताइए 3री कक्षा में आप सब लोग पढ़े हुए हैं, आज आपको क्या काम में आ रहा है, शिवाजी शंभाजी ने क्या किया, आज आप कुछ यूज उसका कुछ इस्तेमाल हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ काम में नहीं आ रहा है। केवल गीता और भागवत का ज्ञान ही काम में आएगा, और जितनी भी है सब अविद्या है। इसलिए हमें असत वस्तु को नहीं, सत वस्तु को, सत शास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज इसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे नारद मुनि से जो विद्या सीखे थे उसी का मनन करते रहते थे। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज को फिर से गुरुकुल में ले जाया गया, गुरुकुल में गए और फिर से एक साल तक प्रहलाद महाराज को पढ़ाया गया। फिर तो ध्यान रखा गया कि कोई इस्कॉन के भक्त ना आ जाए बाहर से कोई, बहुत ध्यान रखा गया, सिक्योरिटी टाइट, सिक्योरिटी गार्ड रखे गए कि कोई बाहर से ना आए और अंदर से भी कोई ऐसी शिक्षा ना मिले। एक साल तक प्रहलाद महाराज को यह भौतिक विद्या पढ़ाई गई और फिर से एक साल जब खत्म हुआ, वेकेशन का दिन आया, प्रहलाद महाराज को घर पर लाया गया। तो सबसे पहले नारद मुनि वर्णन करते हैं, सबसे पहले प्रहलाद महाराज अपनी माँ के पास गए ना। बालक जो होते हैं माँ से बहुत प्रेम करते हैं, पिता से इतना प्रेम नहीं करते हैं। कहते प्रहलाद महाराज अपने घर पे सबसे पहले माँ के पास गए। माँ ने देखा कि एक साल से बेटा, मेरा बच्चा गुरुकुल में पढ़ा है और वहां पर ठीक से, बालक जो होते हैं ठीक से स्नान नहीं करते हैं, तो ये माँ, बालक 5 साल का बालक जब घर पर आया तो अपने हाथ से अपने बालक को नहलाने लगी, अपने हाथ से उसे नहलाया, स्नान कराया और स्नान कराने के बाद मातृमुष्ट समलंकृतम, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाया, पाउडर लगाया, वस्त्र पहनाया, गले में नेकलेस पहनाया, हाथ में कुछ नेकलेस पहनाया और वस्त्र पहना कर कहा कि बेटा अब पिताजी के पास जरा प्रणाम करके मिलकर आओ। प्रहलाद महाराज पिताजी के पास गए और पिताजी के पास जाकर पहले क्या किया, पतितम पाद यो बालम प्रति नंद्य शिशासुर, यद्यपि वह असुर था हिरण्यकश्यपु, परंतु फिर भी प्रहलाद महाराज अपने पिता को प्रणाम किए। देखिए सभी बालकों के लिए यह उपदेश है, सभी बालकों को अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पिताजी हिरण्यकश्यपु जैसे हैं, भक्ति नहीं करने देते हैं फिर भी हम प्रणाम करें। आप 2-3 महीने से भक्ति करने लगे हो तो क्या पिताजी हिरण्यकश्यपु हो गए? यदि वे हिरण्यकश्यपु भी भले हो फिर भी यहां पर प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं पतितम पाद यो बालम, उसे प्रणाम अवश्य करना चाहिए। परिवज्य चिरम दुर्भ्याम परम माप निवृतिम, हिरण्यकश्यपु ने सब काम छोड़ दिया और प्रहलाद को कहा बेटा आओ आओ गोद में बैठो। हिरण्यकश्यपु अपने राज सिंहासन पर बैठा है और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, गोद में बिठाकर आरोप्य अंक वग्राय मूर्धन्य शुकलाम्बुभिः, वास्तव में हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को देखकर गदगद हो गया। वास्तव में भले हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा असुर था परंतु था तो प्रहलाद का बाप। शेर भले कितना भी खूंखार होता है परंतु अपने बच्चे से अवश्य प्रेम करता है, दूसरों के लिए वे खूंखार है। सिंह और शेर दूसरों के लिए भयानक है परंतु अपने पुत्र को तो वे प्रेम से रखता है। वैसे हिरण्यकश्यपु दूसरों के लिए भयंकर था परंतु अपने पुत्र को गोद में लिया, सहलाने लगा और पुत्र को देखकर उनके हिरण्यकश्यपु के आंखों से मूर्ध्य अश्रुक अलम भुवि, उसके आंखों से अश्रु निकलने लगा, हिरण्यकश्यपु के आंखों से अश्रु। आसिंचन विकसत वक्त्रम ईद माह युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर उस समय हिरण्यकश्यपु के आंख से इतना आंसू निकला, इतना आंसू निकला कि प्रहलाद आंसू से ही भीग गया। बेचारा स्नान करके आया था, दूसरी बार स्नान करा दिया क्योंकि इतना बड़ा आंसू, छोटा सा बालक, कितना आंसू निकला होगा। और ये भी जीवन में पहली बार, मुझे लगता है तब तक पहली बार निकला होगा, आंसू का स्टॉक भी इतना हो गया। प्रहलाद महाराज भीग गए, तब प्रहलाद महाराज को बिठाया, सहलाया, तब हिरण्यकश्यपु वाच। अब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रहलादन उच्चताम तात स्वधितम किंचित उत्तमम काले नेता वतायुष्मन यद शिक्षत गुरोर भवान। हे प्रहलाद, एक साल तक तुम्हारे गुरु शंड और अमृत ने तुम्हें बहुत सिखाया होगा। प्रहलाद ने कहा हाँ बहुत सिखाया। तो प्रहलाद, एक साल तक तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान में सबसे अच्छा ज्ञान तुम्हें कौन सा लगा? वही बात दूसरी बार। प्रहलाद ने कहा, पिताजी एक बार जवाब दिया तो आपको क्रोध आ गया था, दूसरी बार मत पूछिए आप, और कुछ पूछिए ना। नहीं बेटा, तो क्या सीख कर आए जरा मुझे ये बता। पिताजी आप और कुछ पूछिए, मेरे फ्रेंड के मित्र के बारे में पूछिए, क्या भोजन करता हूं ये पूछिए, क्या अच्छा लगता है ये मत पूछिए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये तो भाव है, हम भाव कर रहे हैं कि ऐसा कहा होगा प्रहलाद ने। प्रहलाद को पूछा कि सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, श्री प्रहलाद उवाच, पिताजी आप जानना चाहते हैं अच्छी बात कौन सी लगी, हाँ तो सुनिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी संस्कृत जानते हैं आप क्या जानेंगे संस्कृत, मैं हिंदी में कहता हूं आपको। ये भी एक भाव है। पिताजी भगवान श्री विष्णु है ना, भगवान श्री विष्णु की नवदा भक्ति है, नौ प्रकार की भक्ति, भगवान श्री विष्णु की श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति करना, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नव लक्षणा क्रियत भगवती यद्दा तत्मन्यधीत उत्तमम। भगवान श्री विष्णु की भक्ति और उसमें भी नवदा भक्ति मुझे सबसे अच्छी लगती है। अब आगे आएगा हिरण्यकश्यपु की क्या स्थिति हुई, परंतु ये दो श्लोक जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत उपादेश श्लोक है, इसलिए हम सबसे पहले ये दो श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और बाद में हम यह देखेंगे हिरण्यकश्यपु को क्या हुआ। सबसे पहले प्रहलाद ने जो उत्तर दिया है, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये नवदा भक्ति क्या है। वास्तव में जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, जिसका जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म परमात्मा की सेवा करना है। इस संसार में सब लोग कहते हैं कि हम देश धर्म का पालन करते हैं, हम ये देवी देवता के धर्म का पालन करते हैं, हम माता के धर्म का पालन करते हैं, हम पिता के धर्म का पालन करते हैं, परंतु प्रश्न होता है सबसे बड़ा धर्म क्या है। तब शुद्ध गोस्वामी उत्तर देते हैं, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वह है परमात्मा की सेवा करना। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वे परमात्मा की सेवा करे। कुछ लोग कहते तो क्या माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, परंतु बुद्धि होनी चाहिए। कब तक? माता पिता ने यह देह दिया है, वास्तव में यह देह भगवान की कृपा है, परंतु माता पिता के साथ जो संबंध है यह दैहिक संबंध है, समाज के साथ यह दैहिक संबंध है। आज आप देश की सेवा कर रहे हो, कल पाकिस्तान में जन्म हुआ तो फिर पाकिस्तान की सेवा कर रहे लोग, आज भारत की सेवा तो मरने के बाद पाकिस्तान की सेवा, तो ये जो संबंध है ये शरीर का संबंध है, परंतु भक्तों वास्तव में हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। इसलिए आत्मा का सर्वप्रथम मुख्य धर्म यह है परमात्मा की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और भगवान श्री कृष्ण की हजारों प्रकार की सेवा है, परंतु रूप गोस्वामी उस हजारों प्रकार की सेवा में से 64 प्रकार की सेवा उत्तम मानते हैं, जिसे भक्ति के 64 अंग कहा जाता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह 64 अंगों में सबसे श्रेष्ठ 9 अंग, जिसे नवदा भक्ति कहा जाता है, यह श्रेष्ठ है। भजन एर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति, भजन के भक्ति के सभी अंगों में सबसे श्रेष्ठ यह नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। आइए हम देखते हैं यह 9 प्रकार की भक्ति कैसी है, किस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहले यह 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। श्रवण का अर्थ है सुनना, कान के माध्यम से सुनना। अब देखिए कि यदि कोई व्यक्ति श्रवण नहीं करता है तो बाकी की भक्ति कोई नहीं कर सकता। ये जो आठ भक्ति है, आठों भक्ति का नींव आधार श्रवण है। यदि आप श्रवण नहीं करते हो तो कीर्तन नहीं कर पाओगे, श्रवण नहीं करते हो तो वंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन कुछ नहीं होगा। श्रवण भक्ति जो है मुख्य भक्ति है और सबसे प्रथम भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह नवदा भक्ति में से एक भक्ति भी यदि कोई ठीक से करे फिर भी वह भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और रूप गोस्वामी इस बात का समर्थन देते हैं, हां महाराज परीक्षित श्रवण भक्ति किए थे, केवल सुने थे। और कितना सुने थे? 7 दिन 7 रात। महाराज परीक्षित केवल श्रवण भक्ति करके 7 दिन 7 रात तक सुनने के कारण भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित वैया सकी सकीर्तने। तो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति और उनके आचार्य महाराज परीक्षित। तत्पश्चात दूसरी भक्ति गिनाते हैं कीर्तनम। कीर्तन जो है वे मुंह से होता है, वाणी से। कीर्तन का अर्थ होता है भगवान का गुणगान करना, भगवान की कथा का वर्णन, भगवान के रूप का वर्णन और भगवान का नाम लेना, इसे कीर्तन कहा जाता है। और कीर्तन भक्ति के आचार्य है वैया सकी श्री सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी हाथ में कभी माला नहीं लिए थे, केवल कीर्तन करते थे और कीर्तन करने से भगवत धाम प्राप्त। स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है मन में भगवान का स्मरण करना, भगवान के गुण रूप लीला का याद करना, इसे स्मरण कहते हैं। तो स्मरण भक्ति के आचार्य है प्रहलाद महाराज। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम लोग ऐसी ऑफिस में काम करते हैं, ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर भगवान की कथा नहीं सुन सकते, जहां पर भगवान का नाम भी नहीं ले सकते हैं। अरे भाई, आप कथा नहीं सुन सकते हो, नाम नहीं ले सकते हो, तो स्मरण तो कर सकते हो। आपके मन में तो कोई नहीं घुस सकता है कि मन में क्या हो रहा है, मन में स्मरण कीजिए जैसे प्रहलाद महाराज कर। तत्पश्चात चौथी भक्ति बताते हैं पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ होता है भगवान के चरण की सेवा करना, और जैसे लक्ष्मी जी। तत्पश्चात पांचवी भक्ति है अर्चनम। अर्चन का अर्थ है भगवान के अर्श विग्रह की पूजा करना। और अर्चन भक्ति के आचार्य है पृथु महाराज। पृथु महाराज अर्चन भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त हो। तत्पश्चात छठी भक्ति है वंदन। भगवान को प्रणाम करना ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान के चरणों में प्रणाम करना ये भी बहुत बड़ी, और जानबूझकर प्रणाम करे तो भगवान का धाम मिलता ही है। जबरदस्ती मान लीजिए चलते चलते भगवान के सामने गिर भी गए फिर भी उद्धार हो जाता है। कहते हैं 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। अश्वमेघी यज्ञ जानते हैं जो कलयुग में हो ही नहीं सकता। कहते हैं ऐसा एक नहीं, ऐसा 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला भी फिर से मां के गर्भ में आकर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। परंतु एक बार भी यदि कोई कृष्ण के चरण में झुक जाता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, फिर से उसे इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता है। कृष्ण को प्रणाम करने की यह महिमा है, भगवान को प्रणाम करने की। कहते हैं भगवान को प्रणाम करने से कोटि कोटि अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, भगवान को एक प्रणाम करने से। तो वंदन, भगवान को प्रणाम करना यह भी भक्ति है। और इस वंदन भक्ति के आचार्य है अक्रूर जी। अक्रूर जी कंस के मंत्री जब गोकुल ब्रज वृंदावन में कृष्ण को लेने के लिए आए तब वृंदावन के चौराहे से ही दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिए थे। तो इस प्रकार वंदनम। और सातवीं भक्ति है दास्यम। दास्यम का अर्थ होता है अपने आप को भगवान का दास समझना। दासोस में मैं भगवान का दास हूं, और इस भाव में भगवान की सेवा करना। और इस भक्ति के आचार्य है कौन? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वा नरयुद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्यते। इस दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज अपने आचरण से दिखाए कि किस प्रकार से भगवान का दास बनकर रहना चाहिए। संसार के कुछ मूर्ख लोग हनुमान जी को भगवान मानकर बैठ गए हैं। वास्तव में हनुमान जी अपनी पहचान देते हैं दासोस्मी में, भगवान राम का दास हूं। और कुछ लोग हनुमान जी के पास जाते हैं कि हनुमान जी भगवान एक नारियल चढ़ाता हूं 1,00,000 रुपए का बिजनेस बना दीजिए। अब वो 10 रुपए का नारियल चढ़ाकर 1,00,000 रुपए का बिजनेस बनाना चाहता है। हनुमान जी सोचते कि एक गदा इसके सिर पर मार दू, फूट जाए इसका सिर। हनुमान जी भी प्रसन्न नहीं होते यदि कोई उसे भगवान कहते हैं। हनुमान जी की बात छोड़ दीजिए, साधारण भक्तों को भी भगवान कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य हैं। मेरी इच्छा थी हनुमान जी की कथा यहाँ पर कुछ करें, परंतु समय तो जा रहा है और बहुत बड़ी कथा बाकी है। हनुमान जी की कथा अद्भुत है। खैर, फिर कभी हम हनुमान जी की कथा, ब्रज वृंदावन, मेरी इच्छा थी उखल बंधन की कथा भी की जाए, किस प्रकार से यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा है। खैर, हम सब बंधे हुए हैं समय की सीमा रेखा में, इसलिए हम केवल इसी प्रसंग के ऊपर जोर देंगे। तत्पश्चात 8वीं भक्ति, नवदा भक्ति में 8वीं भक्ति है साख्य भक्ति। साख्य का अर्थ होता है भगवान का सखा बन के उनकी सेवा करना। और इस भक्ति के आचार्य है अर्जुन जी। अर्जुन कृष्ण के सखा थे और रात को जब सोते थे खर्राटे लेते थे तो उस खर्राटे में भी कृष्णा कृष्णा नाम आता था, कृष्ण का नाम लेते थे। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ दे देना, यहां तक अपना शरीर भी प्रदान करना पड़े तो दे देना, इसे आत्मनिवेदन कहा जाता है। आचार्यगण कहते हैं कि अगली 8 भक्ति तो सब लोग कर सकते हैं, परंतु आत्मनिवेदन तो हजारों में एक विरला ही कर सकता है। और इस भक्ति के आचार्य है बलि महाराज, भगवान को अपना देह दे दिए। कथा भागवत के 8वें स्कंद में आप सब जानते होंगे, इंद्र को स्वर्ग वापस दिलाने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया जिसका नाम था वामन अवतार। बहुत छोटे कद वाले ब्राह्मण भगवान बने। बलि महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र बन ही रहे थे। उस समय भगवान वामन वहां पर पहुंचे। बलि महाराज खड़े होकर कहने लगे, बोलो प्रभु क्या चाहिए? जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण भगवान वामन ने कहा, केवल 3 कदम भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा, और कुछ ज्यादा मांगो, केवल 3 कदम? भगवान ने कहा। उस समय बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य खड़े होकर आए, बलि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये विष्णु है और 3 कदम में सब कुछ लूट लेगा ये। बलि महाराज ने कहा, गुरुजी मैं तो इसे ब्राह्मण समझ रहा हूं और यदि यह विष्णु भी है तो फिर भी मेरा सौभाग्य है कि भगवान के पास सब कुछ जा रहा है, उन्हीं की वस्तु उन्हीं के पास जा रही है। शुक्राचार्य ने बहुत रोका, यहां तक श्राप दे दिया। शुक्राचार्य कौन थे? आगे 8वें स्कंद में आगे कथा आती है, देवासुर संग्राम, देवता और दानवों का युद्ध हुआ और उस देवासुर संग्राम में बलि महाराज की मृत्यु हो गई, मर गए थे। परंतु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से बलि महाराज को पुनः जीवित किए। जीवन दान देने वाले शुक्राचार्य ना कह रहे हैं कि मत देना, फिर भी बलि ने गुरु को ठुकरा दिया। वास्तव में ऐसे गुरु को ठुकरा देना चाहिए जो कृष्ण की भक्ति में बाधा बनते हैं। कुछ लोग गुरु बनाकर बैठ गए हैं और वो भक्ति में बाधक है, रुकावट है, क्योंकि अपने आप को गुरु मानते हैं। तो ऐसे गुरु को बलि की तरह त्याग देना चाहिए। गुरु बलि ने गुरु को त्यागा और भगवान को कहा, मांग लीजिए भगवान। हाथ में प्रण लिया, तब भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान श्री वामन ने अपना रूप धीरे धीरे बड़ा किया, अपने 1 कदम से पृथ्वी के सभी ऊपर के लोगों को नापा, दूसरे कदम से पृथ्वी के सभी नीचे के लोगों को, 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब 3रा कदम बचा, भगवान ने कहा, कहां रखूं? 3रा कदम कहां रखूं? बलि महाराज ने कहा, प्रभु डरो मत, आपने ही भगवद गीता में कहा है, याद करो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, यह शरीर भी एक क्षेत्र है, यह शरीर भी एक जगह है। और प्रभु आप ही बताइए, इस संसार में दान बड़ा है कि दान देने वाला बड़ा है? संसार में दान बड़ा है कि दान देने वाला बड़ा है? भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा है। प्रभु दान तो बहुत छोटा है जो आपने ले लिया, देने वाला आपके सामने खड़ा है, यह क्षेत्र आपके सामने है, मेरे सिर पर आपका तीसरा कदम रख दीजिए। इतना कहते ही भगवान श्री विष्णु ने तीसरा कदम बलि के सिर के ऊपर, परंतु भगवान अपने भक्त के ऊपर कैसे अत्याचार करें, तुरंत भगवान वहां से नीचे आ गए, छोटे हो गए और बलि महाराज को कुछ समय के लिए बांधा। परंतु उस समय बलि महाराज और उनकी पत्नी ने जो भगवान के चरण में प्रार्थना की है, अद्भुत है। कहते हैं प्रभु, प्रभु इस संसार में बड़े बड़े योगी योग करते रह जाते हैं, लाखों लाखों वर्षों तक योग ध्यान करते रहते हैं, परंतु उसके ध्यान में आपका चरण भी नहीं आते हैं, आता है वह साक्षात चरण मेरे सिर के ऊपर स्पर्श हुआ, आज मैं धन्य हो गया। प्रभु संसार की नजर में इंद्र जीता हुआ है, बलि हारा हुआ है संसार की नजर में, परंतु यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो इंद्र हारा है और यह बलि जीता है। क्योंकि इंद्र जीतकर क्या जीता, यह तुच्छ स्वर्ग जो कुछ समय के लिए उसे मिल रहा है, परंतु यह बलि आज हार कर भी प्रभु आपको जीत लिया। सत्य है, बलि महाराज के दास बन गए। आज भी मैं आज की बात कर रहा हूं, आज भी बलि महाराज सुतल लोक के राजा है और उसके द्वारपाल भगवान विष्णु बनकर खड़े हैं। आज आज इंद्र, आज हमारे जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। ये इंद्र किसी का नाम नहीं, पोस्ट है। आज इंद्र की पोस्ट पर पुरंदर है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बलि अगले मनवंतर में आपको इंद्र बनना होगा। आज अगले मनवंतर में ये जो पुरंदर उतर जाएंगे और बलि महाराज सुतल लोक पे ऊपर इंद्र के पोष पर स्वर्ग में चले जाएंगे। ये सब भागवत की शास्त्र की कथा है। बलि महाराज भगवान के लिए अपना आत्मा अपना शरीर भी दे दिए, इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। तो ये नौ प्रकार की भक्ति है। ये नौ प्रकार की भक्ति के द्वारा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना, यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। और वास्तव में इस नौ प्रकार की नवधा भक्ति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ये नौ प्रकार की भक्ति में एक भक्ति भी यदि कोई करे पूर्ण रूप से, तब भी उसका उद्धार हो सकता है, तब भी वे भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। तो इस संसार के कुछ लोग कहते हैं तो फिर हम केवल परीक्षित की तरह कथा ही सुनेंगे, माला नहीं जपेंगे, क्योंकि माला जपने में बहुत कष्ट होता है। कुछ लोग कहेंगे हम ड्यूटी सेवा ही करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, माला नहीं जपेंगे, क्योंकि आपने ही तो कहा कि एक भक्ति काफी है। और महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि एक अंग भी काफी है, तो मैं केवल पूजा अर्चन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस और सोऊंगा। परंतु इसका उत्तर यह है कि हाँ, यह सत्य बात है कि भक्ति का एक अंग भगवान का धाम भगवान के प्रति प्रेम कर प्राप्त कराने में सार्थक है, परंतु हम यह नहीं कर सकते। कुछ लोग का कहना ऐसा है कि हम परीक्षित महाराज की तरह केवल कथा सुनेंगे। तो परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक बिना खाए पिए और सोए कथा सुने थे, क्या आप सुन सकते हो? 2 घंटे में ही नींद आने लगती है। कुछ लोग भोजन की राह देख रहे होंगे, कब ये प्रभु जी बंद करेंगे और भोजन खाने जाएंगे। 9 बजे से 8 बजे से शुरू कर दिया है, कब ये बंद करेंगे? थकते भी नहीं है बोल बोल कर, कुछ लोग सोचते होंगे। तो परीक्षित महाराज की तरह हम श्रवण नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे केवल अर्चन, हम क्या अर्चन करेंगे? पृथु महाराज ने अर्चन किया था भगवान के लिए, क्या अर्चन किया, हम नहीं कर सकते हैं। तो यह नौदा भक्ति में से किसी भी भक्ति को पूर्ण तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए संत आचार्य गण बहुत सुंदर मार्ग निकालते हैं। हमारे प्रभुपाद जी, हम जिस संस्था में है इस संस्था में प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सुंदर मार्ग बना दिया है। प्रभुपाद जी ने हम सबको ये 9 भक्ति का आचरण सिखा दिया है। कोई भी व्यक्ति एक भक्ति पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें 9 भक्ति, थोड़ी श्रवण कीजिए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, थोड़ा स्मरण कीजिए, थोड़ा दास्य, थोड़ा साख्य, थोड़ा पूजन भी कर लीजिए, थोड़ा आत्मनिवेदन भी कीजिए, सब थोड़ा थोड़ा कीजिए और अंत में आप भगवान के धाम में चले जाओगे। हरे कृष्णा वास्तव में इस कलयुग के जन समाज के ऊपर प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा रही है, नहीं तो हम सब लोग फंस गए होते, ये भागवत और गीता होते हुए भी फंस गए होते। प्रभुपाद जी ने इसे सुंदर राह दिया है, सुंदर दृष्टि दी। देखिए प्रभुपाद जी की बुद्धि की क्या विशेषता की जाए, उन्होंने सब कुछ करने के लिए कहा गया, एक ही चीज करने में कंटाला। कल ही मैं प्रभु जी को बता रहा था, हम जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें 7-8 पीरियड होते हैं, आधे आधे पौने पौने घंटे के, आधा घंटा मैथ्स पढ़ो, फिर आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ो, फिर आधा घंटा ये, फिर उसमें लंच होता है, फिर ये पढ़ो। क्या वे मूर्ख है? वे एक दिन में केवल मैथ्स ही पढ़ाते होंगे, दूसरे दिन में हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो अच्छा है ना, बच्चों को इतना सारा किताब नहीं लेकर जाना पड़ेगा। परंतु वे लोग जानते हैं कि हमारा स्वभाव है विविधता, मनुष्य का स्वभाव है वह चेंज चाहता है, कुछ चेंज होना चाहिए, इसलिए वे पढ़ाने वाले भी आधे आधे घंटे में चेंज करते रहते हैं। वैसे भी ये भक्ति के अंगों में भी ऐसा है, केवल श्रवण कितना करोगे, केवल अर्चन कितना दिया घुमाओगे, तो कुछ थोड़ी देर दिया घुमाओ, थोड़ी देर अर्चन करो, थोड़ी देर श्रवण करो, थोड़ी देर कीर्तन करो, तो थोड़ी देर आत्मनिवेदन, कुछ देर स्मरण करो, तो एक दिन खत्म हो जाएगा, दूसरा दिन वैसे जीवन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति भगवान के प्रति यदि हम करते हैं तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मुझे अच्छा। प्रहलाद महाराज इस बात को और क्लियर करते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि भक्तों के बीच में ये प्रवचन हो रहा है। प्रहलाद महाराज इस बात को और क्लियर कर रहे हैं कि इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियेत भगवती यद्दा तत्मन्ये अधित उत्तमम। क्या कहते हैं, इस संसार में कुछ लोग भक्ति तो करते हैं परंतु अपने लिए भक्ति करते हैं। प्रायः मैंने एक बार पूछा था इसी श्लोक के ऊपर, मैंने एक बार पूछा कि आप भक्ति क्यों करते हो, 99.99% यही उत्तर आया कि मैं पहले बहुत दुखी था परंतु भक्ति में आया तो सुखी हो गया, तो सुख प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूं। प्रायः सबका यही उत्तर होता है, क्योंकि भक्ति करता हूं तो मुझे बहुत सुख मिलता है, सुखी होने के लिए मैं भक्ति करता हूं। प्रायः संसार में यह भी गलत नहीं है, ये सुनकर आप लोग भक्ति करना छोड़ मत दीजिए, मैं तो आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, भाव को और आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे, जैसे हमारी भक्ति कैसी है, मुझे इसमें सुख मिल रहा है इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। परंतु निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, अपनी इंद्रियों को सुखी करने के लिए यदि कोई कार्य करता है तो वह भक्ति नहीं, वह तो काम है, कामना है। कोई चाहता है मैं सुखी हो जाऊंगा भक्ति करके, तो ये भक्ति नहीं, ये तो काम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, परंतु कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम प्रेम। मैं मेरे लिए, मुझे सुखी होना है इसलिए यदि कोई ये समझकर भक्ति करता है तो वह भक्ति नहीं, वह कामना है। परंतु मेरे कृष्ण के लिए, मेरे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, गोविंद को प्रसन्न करने के लिए मैं भक्ति कर रही हूं या कर रहा हूं, तो उसे प्रेम कहा जाता है। तो यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इति पुंसार अर्पिता विष्णु। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात कहूं कि हम हमारे घर पर भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें भाव क्या होता है, मुझे क्या खाना है, मुझे आज पाव भाजी खाना है, चलो पाव भाजी बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। माता जी पूछती हैं आज कौन सी सब्जी खाओगे बेटा, तो हमें जो खाना है वे बना देते हैं फिर भगवान को दिखा देते हैं, तो ये भक्ति नहीं है। है, मैं ऐसा नहीं करूं ये पाप है, परंतु ये कनिष्ठ भक्ति है। प्रहलाद महाराज को ये भक्ति अच्छी नहीं लगती है। प्रहलाद महाराज को कौन सी भक्ति अच्छी लगी, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कान्हा को क्या अच्छा लगता है, वे कौन सी सब्जी खाएगा, उसे जो अच्छा लगता है वो बनाऊंगी या वो बनाऊंगा, और फिर वो जो बचेगा वह मैं खाऊंगा, यह है शुद्ध भक्ति। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि ठाकुर भक्ति विनोद ने एक भजन में लिखा है, मैं भूल रहा हूं कौन सा भजन है, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा भी यदि कृष्ण का प्रसाद खाया जाए तो व्यक्ति परम पवित्र हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। याद आ रहा है किसी को वो लाइन? थोड़ा भी यदि सकल प्रपंच जय, क्या है वो? सकल प्रपंच जय। आगे कुछ है, भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा भी प्रसाद यदि खाया जाए तो सकल प्रपंच सभी दुखों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और हम शुद्ध बन सकते हैं। क्या करने से? थोड़ा सा प्रसाद। अब विचार कीजिए हम कितना कितना टन प्रसाद खा चुके हैं और फिर यह देखिए हम कितना शुद्ध हुए हैं। हम सब गृहस्थ की बात तो छोड़िए, कभी कभार हम बाहर का खा लें, लेकिन कुछ तो ब्रह्मचारी तो रात दिन यही खा रहे हैं, तो क्या ये परम शुद्ध हो गए? देखिए हृदय में क्या शुद्धता आ गई, क्या कमी क्या है, शास्त्र गलत है या हम गलत है? शास्त्र सही है, शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण का थोड़ा भी प्रसाद यदि खाया जाए तो परम पवित्र हो सकते हैं, शास्त्र बिल्कुल शुद्ध है, गलती हम में है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि आपके शास्त्र में तो लिखा है कि कृष्ण का थोड़ा भी प्रसाद खाया जाए तो व्यक्ति परम शुद्ध हो सकता है, ये भक्ति शास्त्री कोर्स प्रभुपाद जी ने भक्ति सदाचार, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव, ये तीन कोर्स बनाए हैं। भक्ति शास्त्री कोर्स में यह प्रश्न उठा, देवामृत प्रभु को यह प्रश्न पूछा गया था। प्रभु जी, देवामृत प्रभु जो पहले बेलगांव में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आज वृंदावन में हैं, देवामृत प्रभु को यह प्रश्न देवामृत प्रभु को ललकारा गया था, प्रभु जी आपके मंदिर में, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, आपके वृंदावन मंदिर की बात कर रहा हूं, लिखा गया है कि थोड़ा सा प्रसाद परम पवित्र व्यक्ति को शुद्ध बना देता है, तो यहां तो 2400 घंटा प्रसाद बनता है, प्रसाद के अलावा कोई कुछ नहीं खाता है, फिर भी लोग शुद्ध क्यों नहीं देखे जाते हैं? प्रभु जी मौन हो गए। अब इसका उत्तर क्या दिया जाए, वास्तव में इसका उत्तर कुछ है ही नहीं। तो हमारे एक गुरु भाई हैं, उन्होंने उत्तर दिया प्रवचन के बाद, उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा कि देखो जैसे भक्त में तीन कैटेगरी होती है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त में तीन कैटेगरी होती है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, वैसे प्रसाद में भी तीन कैटेगरी होती है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ प्रसाद, मध्यम प्रसाद और उत्तम प्रसाद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए तो वो प्रभु जी कह रहे थे कि वास्तव में उत्तम प्रसाद उसे कहते हैं, सबसे बेस्ट जो शास्त्र में बात की गई है, थोड़ा भी ले लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। वो किस प्रसाद की बात है? वह उत्तम प्रसाद जो कृष्ण को चाहिए, कृष्ण को जो अच्छा लगता है उसके लिए बनाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में खाए, वो है उत्तम प्रसाद। परंतु आपके यहाँ तो पिज्जा बनता है, पाव भाजी बनती है, बर्गर बनता है। अब भागवत खोलकर दिखाओ, कहाँ लिखा है कृष्ण ने बर्गर खाया? कहाँ लिखा है कृष्ण ने सैंडविच खाया? कहाँ लिखा है कृष्ण ने पाव भाजी खाया? ये तो हम हमारे लिए खाना चाहते हैं परंतु भगवान को भोग लगा देते हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। तो उत्तम प्रसाद वह है जो कृष्ण के लिए बने, बाकी के भी प्रसाद है, मैं ये नहीं कर रहा हूं ये गलत है, सब ठीक है, परंतु प्रहलाद महाराज जिस भक्ति की बात कर रहे हैं वे भक्ति वह है कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को सुखी करने के लिए। और यह भाव ब्रज वृंदावन में रहने वाले गोप गोपी और सखाओं का है, कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, कृष्ण सुखी होने चाहिए बस। इसके उपलक्ष्य में एक कथा कह दूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, और वैसे तो भगवान सच्चिदानंदमय विग्रह है, उसे कभी बीमार या बुखार नहीं आ सकता है, परंतु वो लीला प्रकट करना चाहते थे। द्वारका में रहते रहते भगवान को बुखार आ गया, बहुत जोरों से बुखार आया, अब बहुत दवाई की गई, वेद आए, फिर भी वो बुखार कम नहीं हुआ। अंत में नारद जी खबर लेने आए कि देखो देखो क्या हो गया है भगवान को, भगवान की नस पकड़ कर देखा, बहुत गर्म बहुत बुखार है। भगवान ने कहा नारद कुछ नहीं हुआ है, बुखार तो बहुत है, परंतु यदि कोई मेरा भक्त अपने चरण की रज मेरे सिर पर लगा दे तुरंत बुखार शांत हो सकता है। नारद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, 16108 तो आप ही के घर पर है, उनमें से एक तो दे देगी। नारद मुनि सबसे पहले रुक्मणी सत्य मामा के पास गए, कहा कि आपके पतिदेव को बुखार आया है, बेचारे बहुत दुखी हैं। एक काम करो अपने अपने चरण की रज दे दो, उनके सिर पर लगा देते हैं, तुरंत ठीक हो जाएगा। रुक्मणी ने कहा पागल हो गए हो क्या, हमें नरक में भेजना चाहते हो? कृष्ण भगवान के सिर के ऊपर हमारे चरण की रज लगाकर हम नरक में जाना नहीं चाहती हैं, भागो भागो यहां से। नारद मुनि 16108 रानियों को मिले, किसी ने नहीं दिया, बेचारे निराश होकर वापस आए, प्रभु कोई नहीं दे रहा है। कृष्ण ने कहा नारद एक काम करो, वे भी ड्रामा करने में उस्ताद है, भगवान भी ड्रामा ऐसा करते हैं। लोग महारानी कुंती कहती हैं जी नटो नाट्य धरो यथा, जैसे ड्रामा करने वाला मान लीजिए आपका भाई ही क्यों ना हो, ड्रेस बदल कर यदि रंगमंच पर आ जाए तो अपने भाई को भी हम नहीं पहचान सकते। कृष्ण भी ऐसा रोल कर रहे हैं। नारद एक काम करो, यहां कोई नहीं दे रहा है तो जरा ब्रज वृंदावन में जाकर एक चक्कर लगा कर आओ, शायद वहां से कोई मिल जाए। नारद मुनि ब्रज वृंदावन गोकुल में आए और गोकुल में आकर कहे कि द्वारका में भगवान कृष्ण बहुत बीमार है, बहुत बुखार है। यह सुनते ही सारी गोपियां रोने लगी। नारद ने कहा ये क्या कर दिया, ये सब लोग रो रहे, कहा शांत रहो शांत रहो, बुखार कम करने का इलाज मेरे पास है। बोला बताओ क्या इलाज है। तब नारद जी ने कहा कि यदि उनका कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे और उसके सिर पर लगाया जाए तो तुरंत बुखार मिट सकता है। बस गोपियां तो नाच नाच कर गुनी भर भर कर नारद मुनि को वह अपनी चरण की रज देने लगी कि नारद जी जल्दी जाओ और उसके सिर पर लगा दो। नारद जी ने कहा ये क्या कर रही हो, आप सब लोग रज देने के लिए तैयार हो गई, जानती नहीं हूं वे भगवान है और आपके चरण की रज उनके सिर पर लगेगी, आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो भक्तों वृंदावन की गोपियों ने इतना ही कहा कि नारद जी एक नहीं हजार हजार जन्म तक हम नरक में रहने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारे कृष्ण को एक सेकेंड के लिए भी दुख नहीं आना चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है, भले हम नरक में चली जाए परंतु कृष्ण को हम सुखी देखना चाहती। ये है भक्ति, ये है भाव, ये है प्रेम। चैतन्य महाप्रभु ये इसी भक्ति को देने के लिए आज से 523 वर्ष पूर्व आए थे, जिसे ब्रज भक्ति कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ऐश्वर्य भाव में तो सब लोग भक्ति कर रहे हैं, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट पाप दूर करे, सब लोग कर रहे हैं, परंतु भाव भक्ति कोई नहीं कर रहा है। सब लोग भय भक्ति कर रहे हैं संसार में, सब लोग हम यदि भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे नरक में जाएंगे, ऐसी भक्ति करते हैं। कृष्ण को पुत्र मानकर, सखा मानकर या प्रियतम मानकर कोई भक्ति नहीं करता। वास्तव में भगवान को पुत्र मानकर यदि आप भक्ति करते हो तो भगवान बहुत सुखी होते हैं। कहां है चैतन्य चरितामृत में लिखा है, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई स्त्री मेरी मां बनकर मुझे पुत्र मानती है और मुझे डांटती भी है फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत उतना आनंद मुझे ब्रह्मा जी की स्तुति में भी नहीं आता है। सखा भगवान श्री कृष्ण के सखा कृष्ण को जब गाली देते हैं, अरे सारे काले कलूटे, कृष्ण को ब्रज वृंदावन में रहने वाले ब्रजवासियों की गाली में जितना आनंद आता है उतना ब्रह्मा जी की स्तुति में भी नहीं आता है। इसलिए हमारे ब्रज में तो गाते हैं, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गारी। ब्रज की गालियों में क्या आनंद है भगवान जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि प्रिया यदि मान करे, भगवान को कोई यदि अपना प्रियतम मानकर उनके साथ मान करता है, उनके ऊपर क्रोधित होता है, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी भक्ति प्रहलाद महाराज को अच्छी लगती है, भय भक्ति नहीं। या वो पाव भाजी वाली भक्ति नहीं, पानी पूरी वाली। कभी सुना कृष्ण ने अब भोजन थाली के ऊपर बैठकर पानी पूरी लेकर आए थे और खाए? कभी नहीं। छास लाए थे, रोटी लाए थे, आचार लाए थे, ये सब सुना है। तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा भोग होना चाहिए, भाव यह है। तो आइए यहां पर मैं समाप्त करता हूं। हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा प्रहलाद सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, तो प्रहलाद महाराज ने कहा पिताजी नवधा भक्ति, नौ प्रकार की जो भक्ति है ये मुझे सबसे अच्छी लगी। प्रहलाद महाराज ने जब ऐसा कहा, एक बार तो ऐसा हो चुका था, अब दूसरी बार जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि विष्णु की भक्ति मुझे अच्छी लगती है, तब हिरण्यकश्यपु ऐसा क्रोधित हुआ शाम को 5 बजे बताऊंगा। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति मुझे सबसे अच्छी लगती है इस प्रकार से उत्तर दिया। नारद मुनि कहते निशम्य तत् सुतवचो हिरण्यकश्यपुस्तदा गुरु पुत्रम उवाचेदम रुषा प्रस्फुरिता धर। प्रहलाद के मुख से जब यह सुना हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हुआ नारद मुनि कहते उसका मुख लाल हो गया, मुंह का रंग बदल गया और उसके होठ अधर और ओष्ठ दोनों कांपने लगे। जब क्रोध आता है तब ओष्ठ और अधर कांपने लगते हैं। और हिरण्यकश्यपु क्या बोला, जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु की भक्ति अच्छी लगती है, तब हिरण्यकश्यपु जोर से कहा ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम शयता सता असारम ग्रहितो बालो ममा द्रुत्य दुर्मते। हे ब्रह्म बंधो, हे ब्राह्मणों में अधम, यहां आओ। शंड और अमर तो कांप गए, वे तो सोच लिए कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। कहा कि अरे मूर्ख, अरे ब्राह्मणों में अधम, ये मेरे बालक को तुमने क्या सिखाया है, ये मूर्ख क्या बोल रहा है। संति ही साधवलो के दुर्मेत्रा छद्म वेशिण, आज मैं जान गया कि वास्तविक शत्रु तो तुम दोनों हो मेरे। आज मैं समझ गया कि तुम दोनों ए शंड और अमर, तुम दोनों वेश बदल कर आए हो, वास्तव में तुम दोनों विष्णु के पक्ष के हो। लेकिन वेश बदलने वाले का भेद वैसे ही खुल जाता है जैसे पापियों का भेद रोग आने पर खुल जाता है। हिरण्यकश्यपु भी शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था, कितनी बड़ी बात कर रहा है। कहते हैं आप लोगों का भेद वैसे खुल जाता है, खुल गया जिसे पापियों का भेद रोग आने पर खुल जाता है। ये सत्य बात है। इस संसार में कौन कितना पापी है यह यदि देखना है तो देख लेना चाहिए कि वह कितना रोगी है। जो ज्यादा रोगी है समझ लेना चाहिए उसने अगले जन्म में बहुत पाप किया है। मनुष्य स्मृति में कहा गया है ब्रह्महा क्षय रोगी स्यात्। क्षय रोग, क्षय नामक रोग होता है जिसको आज की भाषा में कैंसर कहा जाता है। जिसे कैंसर होता है उसे समझ लेना चाहिए कि अगले जन्म में उसने वैष्णव अपराध किया है। वैष्णव अपराध करने वाले को अगले जन्म में कैंसर होता है, ये मनुस्मृति में कहा गया है। ब्रह्महा क्षय रोगी स्यात्, जिसको कैंसर हुआ है समझ लेना चाहिए कि अगले जन्म में वो वैसा था। सुरापश्चा व दंतक, और जो पिछले जन्म में बहुत शराब पिया हुआ होता है, अगले जन्म में बहुत शराब पिया होता है, इस जन्म में उसके दांत बहुत बिगड़े हुए होते हैं, पीले होते हैं। किसके पीले हैं? जिसके दांत पीले हैं समझ लेना चाहिए अगले जन्म में बहुत सुरा, बहुत शराब पिया है। स्वर्ण हारी तुकु नखी, और जो बहुत गहने सोने की चोरी करता है उसका नख जो है कुनखी हो जाता है, बहुत बिगड़ जाता है। और दुश्चर्मा गुरुतल पग, और जो गुरु पत्नी गामी होता है, जो अवैध स्त्री संग करता है उसे चमड़ी का रोग होता है। कोड़ को क्या कहते हैं मराठी में? कोड़ी कहते हैं। हाँ, जिसको इस जन्म में कोड़ हुआ है समझ लेना चाहिए उन्होंने अवैध स्त्री संग किया है। तो हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि वह लोगों का भेद खुल जाता है उसके रोग से, कि वे उसने कितना पाप किया है, वैसे ही तुम दोनों का भेद आज मुझे पता चला कि वास्तविक शत्रु तो तुम दोनों हो। ये दोनों दोनों हाथ जोड़कर शंड और अमर हिरण्याकश्यपु के चरण में गिर गए। सरकार नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम गुरु पुत्र उवाच। शंड और अमर बोलने लगे, सरकार न मत प्रणीतम, ये आपके पुत्र प्रहलाद ने मत न हम लोगों ने कुछ नहीं सिखाया है। हिरण्याकश्यपु ने कहा, तो किसने सिखाया? न पर प्रणीतम, दूसरे बाहर वाले ने भी, हमने बहुत सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए थे। न मत प्रणीतम हमने भी नहीं सिखाया, न पर प्रणीतम बाहर वाले ने भी नहीं सिखाया, तो ये तुम्हारे बाप ने किसको किसने सिखाया? तब कहते हैं, नैसर्गिकी यम मदिरस्य राजन, हे राजन क्या बताए, ये माता के गर्भ से जन्म से ही सीख कर आया है, बाहर से कोई नहीं सिखा रहा है। नैसर्गिक रति, ये स्वाभाविक ये सीख कर ही आया है। अच्छा, इसे तुमने नहीं सिखाया? नहीं। बाहर वालों ने नहीं सिखाया? नहीं। अच्छा, अंदर से ये ज्ञान प्रकट हो रहा है। हिरण्याकश्यपु ने कहा होगा, तुम्हें और मुझे तो नहीं हुआ, ये प्रहलाद को ही अंदर से कैसे प्रकट हो रहा है? नारद मुनि अपनी कमेंट देते हैं, राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाते हैं। गुरुणैव प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम् न चेद् गुरु मुखियम् ते कुता अभद्रा सती मति। तब हिरण्याकश्यपु ये दोनों शंड और अमर को छोड़कर प्रहलाद को पूछ रहे हैं, प्रहलाद किसने सिखाया, तेरी ये बुद्धि कैसे बिगड़ गई? प्रहलाद ने कहा कि मेरी बिगड़ी थोड़ी ना है, मेरी तो अच्छी हो गई है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना, अपनी मति को कृष्ण में लगाना, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अपनी मति को कृष्ण में लगाना यही सबसे बड़ी बात है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, और ये ऑटोमेटिक लग जाती है, लगानी नहीं पड़ती है पिताजी। जैसे लोहा चुंबक के प्रति ऑटोमेटिक चिपक जाता है, वैसे ऑटोमेटिक ये भगवान के प्रति ये मति लग जाती है। तो प्रहलाद, हमारी मति कृष्ण में क्यों नहीं लगती है, और ये तुम्हारे ये दोनों गुरु की मति भी कृष्ण में क्यों नहीं लगी, ये सारे दैत्य कुल में रहने वाले सबकी मति कृष्ण में क्यों नहीं लगी, ये भीड़ में जो मंदिर में नहीं आते उनकी मति कृष्ण में क्यों नहीं लग रही है? तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, प्रभुपाद जी को यह श्लोक बहुत प्रिय था। ये जो आने वाले तीन श्लोक ऐसी भक्ति के दान, प्रभुपाद जी को बहुत प्राय अपनी किताबों में प्रवचनों में यह श्लोक को उद्घाटित करते हैं। जब हिरण्याकश्यपु ने पूछा कि हम सबकी मति कृष्ण में क्यों नहीं लगती है, तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, मति न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। पिताजी, आप यही जानना चाहते हो ना कि आपकी मति कृष्ण में क्यों नहीं लगती है? आपकी बात नहीं है, आपके साथ साथ जिनकी मति कृष्ण में नहीं लगती है उनका कारण यह है कि अदांत गोभी उनकी इंद्रिया वश में नहीं है। सबको कह कहे और अपने पिता को भी कह दे, पिताजी आपकी इंद्रिया आपके वश में नहीं है, इसलिए आपकी मति कृष्ण में नहीं लगती। ये सत्य बात है, हम हमारी इंद्रियों को वश में नहीं किए हैं, इसीलिए हमारी मति कृष्ण में नहीं लगती। इंद्रियों को यदि वश में किया जाए तो निश्चित हमारी मति भगवान में लग सकती है। हमारी इंद्रिया सब जगह पर भाग रही है। जैसे प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में आगे कहेंगे कि हे नरसिंह देव भगवान, जैसे एक व्यक्ति की 10 पत्नी हो और वह व्यक्ति थका मांदा जब ऑफिस से घर पर आता है और 10 पत्नी एक बाल पकड़ती है, एक हाथ एक दूसरा हाथ, एक पांव एक दूसरा पांव, एक धड़, 10 पत्नी 10 दिशा में उस व्यक्ति को खींचती हैं और अपने अपने विषयों की ओर लेकर जाती हैं, वैसे ही मेरी ये 10 इंद्रियां अपने अपने विषयों पर मुझे खींच रही हैं, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। इंद्रिया जो है विषयों की ओर भागती है, आंख जो है गलत दृश्य देखने की आंख की प्यास है, इंद्रियों ये त्वचा जो है स्पर्श करने की प्यास है उसे, जीवा को टेस्ट की प्यास है। इस प्रकार सभी इंद्रियां भोग भोगना चाहती हैं, यदि इसे वश में न किया जाए तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। इस संसार में देखा गया है इंद्रियां वश में नहीं होने के कारण व्यक्ति संसार से सुख प्राप्त नहीं कर सके, यद्यपि उनके पास कमी नहीं थी। कहते हैं सहस्त्र बाहु दस बदन आदनी तो बचेन काल बलीते। इस संसार में एक से एक राज राजेश्वर राजा महाराजा और एक एक नहीं दस दस सिर वाला रावण जिसके पास सोने की लंका थी फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रिया अपने वश में नहीं थी। रावण की बात छोड़ दीजिए, सहस्त्र बाहु जिसके पास सहस्त्र भुजा थी, 1000 भुजा वाला कार्तिकवीर अर्जुन भी सुखी नहीं हो सका क्योंकि इंद्रिया वश में नहीं थी। हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये करते 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 एक दिन उठ गए संसार से, सुख प्राप्त नहीं कर सके। भक्त ये सत्य बात है, जीवन में सुख प्राप्त करना है तो भक्ति और संतोष होना चाहिए। इस संसार में सब लोग अंधी दौड़ यहां से वहां धन प्राप्त करने के लिए पीछे पड़े हैं। कितना प्राप्त करेंगे? मान लीजिए आपके पास धन भी आ जाए, धन आ भी जाए तो कितना खाओगे? यदि आप 5 रोटी खाते हो और करोड़पति बन गए तो 5 ही खाओगे, 10 नहीं खाओगे? खाने के लिए भोजन थोड़ा चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी रात दिन मेहनत करते हैं और इतना एकत्रित करते हैं, अंत में तो सब छोड़कर जाना है। क्या लेकर आए थे? विचार कीजिए, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है? सिकंदर बहुत सुंदर उपदेश देकर गया। सिकंदर जिसके पिता का नाम पुरु था, उसकी इच्छा हुई कि दुनिया को जीतूंगा। जवान लोगों का खून बहुत गर्म होता है, जवानी का खून था। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा दुनिया को जीतकर क्या करेगा? रहने के लिए एक घर चाहिए, क्या पूरी दुनिया में अंगड़ाई लेगा? क्या होगा दुनिया को जीतकर? सिकंदर ने कहा नहीं, दुनिया को जीतूंगा। दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा। कहा जाता है लगभग 80% दुनिया को जीत लिया सिकंदर अलेक्जेंडर। और पता चला कि सिकंदर को एक रोग है, आज की भाषा में उसे कैंसर कहा जाता है, कैंसर का रोग था। सब कुछ छोड़कर, दुनिया को जीतना छोड़कर वे वापस अपने घर पर आया और मृत्यु का दिन जब निकट आया, सिकंदर ने अपनी अंतिम ख्वाहिश अंतिम इच्छा कही के पिताजी हे मेरे स्वजनों, जब आप लोग मुझे पृथ्वी में गाड़ोगे तब एक काम करना, मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना। क्यों? तब सिकंदर ने इतना ही कहा कि मैं सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था, पूरी दुनिया को जीत लिया, परंतु मैं तो नहीं समझ सका, मेरे आचरण से आगे आने वाली जनता सीख पाएगी कि सिकंदर जब इस दुनिया में आया तो दोनों हाथ खाली थे और जब इस दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली है। इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली रहने वाले हैं, क्यों यह दौड़ लगा रहे हैं हम? इंद्रिया अपने वश में होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं पिताजी आप लोगों की इंद्रिया इसलिए भगवान में नहीं लग रही है क्योंकि आप यह कार्य नहीं करते हैं। बेचारे श्रुति परायण प्रभु मंदिर में बुलाते हैं तो हम एक ही बहाना देते हैं कि हमें ऑफिस में जाना है, वहां जाना है, ये काम है, वह काम है, भजन भक्ति, इसीलिए हमारी मति भगवान में नहीं लगी। अदांत गोभी विशिताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणाना। और प्रहलाद महाराज दूसरी बात करते हैं, संसार में सबकी मति इसलिए कृष्ण में नहीं लगती है क्योंकि संसार के सब लोग इस भौतिक जगत से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु भौतिक जगत से सुख प्राप्त करना मानो वैसा ही है जैसे गन्ने का जूस निकालने वाले को तो आप देखते होंगे ना, गन्ने का जब जूस निकल जाता है फिर जो बचता है उसे क्या कहते हैं? छोटे,
छोटे,
छोटा,
छोटा।
हिंदी में भी गुजराती में भी यही कहते हैं, छोटा। गन्ने का जब जूस निकल जाता है तब वो छोटा यदि आपके पास आ गया फिर आप उसे कितना भी चबाओ, कितने भी मशीन में भी डालो, उसमें से एक बूंद भी नहीं निकलेगा। वैसे जो लोग इस संसार, इस भौतिक जगत से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसे इस भौतिक जगत से सुख वैसे ही नहीं मिलेगा जैसे गन्ने के छोटे से रस नहीं मिलता। पुनः पुनः, लेकिन फिर भी यह मनुष्य इतना ज्ञानी हो जाता है कि पुनः पुनः बार 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 जन्म लेने के बाद भी इस भौतिक जगत से वह सुख प्राप्त करना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि मिट्टी को पेलने से यदि तेल निकल जाए, कभी निकलता है? कभी नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी मान लो निकल जाए, मिट्टी को तेल पेलने से मान लीजिए एक बार तेल निकल भी जाए परंतु भौतिक जगत से सुख मिले ये कभी संभव नहीं है, कभी नहीं, क्योंकि यह जगत सुख के लिए नहीं दुख देने के लिए बनाया है। बनाने वाला गीता में खड़े खड़े कह रहा है ये अर्जुन दुखालयम अशाश्वतम, मैंने जो ये बनाया है ना ये दुख देने के लिए बनाया है, भोग भोगने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यशाली जीव इसे समझ नहीं सकता। पुनः पुनः मैं प्राय श्लोक के ऊपर बच्चों को दृष्टांत देता हूं, बच्चे लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। जो लोग च्युइंगम खाते हैं, भक्ति में आने के बाद तो नहीं खाते होंगे, पहले खाए होंगे, क्यों प्रभु? च्युइंगम जब आप खाते हो तो दो मिनट तक उसे रस आता है, फिर क्या होता है? केवल रबड़ बचता है। फिर उसे कितना भी चबाओ, कितना भी चबाओ, आपका मुंह थक जाएगा, फेंट निकल जाएगा, फिर भी उसे रस नहीं मिलेगा। बस वैसा ही ये भौतिक जगत रबर की तरह है, कितना भी चबाओ, कितना भी चबाओ, इसे सुख और आनंद कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह सकते नहीं हमें तो सुख मिल रहा है, परंतु भक्तों ये सुख नहीं, ये तो दुख की निवृत्ति की स्थिति है और हम उसे सुख समझ बैठते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को दृष्टांत देते हैं, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, राज दंड येन येन नदित चुबाए। आज से 500 वर्ष पूर्व पहले के राजा महाराजा अपराधियों को जब दंड देते थे तो कैसा दंड देते थे? वह अपराधी को नाव में बिठाकर बीच नदी में लेकर जाते और फिर उसका बाल पकड़कर उसे पानी में डुबा देते, पानी में डुबा देते, उसका मुंह भी पानी में डुबा देते, वह तड़पने लगता, छटपटाने लगता, छोड़ो छोड़ो, बाहर निकालो बाहर निकालो, लेकिन फिर भी उसे बाहर नहीं निकालते थे। और अंत में जब उनके मृत्यु की, जीवन की अंतिम सांस बच जाती तब उसे बाहर निकाल देते, तब वे बाहर निकलकर बहुत सुख मिल गया। क्या वह सुख है? बस फिर दो मिनट के बाद फिर से अंदर, अरे छोड़ो छोड़ो, बाहर निकालो, मर जाऊंगा, बहुत तड़पता बहुत तड़पता, जब अंतिम सांस बचती तो फिर से बाहर निकालो, और जब बाहर निकलता था यार मजा आ गया। बताइए जब उस व्यक्ति को बाहर निकालते हैं क्या उसे सुख मिल रहा है? सुख नहीं, उसे दुख दिया जा रहा है। एक सेकंड के लिए दुख दूर कर दिया तो हम उसे सुख समझ बैठते हैं। वही स्थिति इस भौतिक जगत में है, निरंतर हमें दुख मिल रहा है। कुछ समय के लिए दुख मिलना बंद हो गया तो उस समय को हम सुख समझ बैठते हैं। वह सुख नहीं, वह दीख दुख निवृत्ति की स्थिति है। सुख ही संसार में है ही नहीं, सुख एकमात्र भगवान के धाम में, और भगवान के धाम में जाने के लिए जो साधन है भक्ति उसमें। तो इस संसार में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इंद्रिया वश में न होने के कारण सब लोग इस भौतिक जगत से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु यह सुख पुनः पुनः चरवित चरवणानम ऐसा है। इसलिए हे मेरे पिताजी, आप लोगों की बुद्धि भगवान कृष्ण में नहीं लग रही है। यदि आपका मन, आपकी मति कृष्ण में लगानी है तो यह सब कुछ छोड़ो, तब लगेगी। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद ठीक है हमारी मति नहीं लगती है, परंतु यदि हमारी मति लगाने वाले कोई गुरु मिल जाए तो? प्रहलाद ने कहा, यदि योग्य गुरु मिल जाए तो आपकी मति लग सकती है। हिरण्यकश्यप ने कहा, गुरु तो है एक नहीं, तीन तीन गुरु है, शुक्राचार्य और ये दोनों। प्रहलाद ने कहा, ये दोनों ये तो अंधे हैं, अंधा यथांधे उपनीय माना, दोनों को हाथ दिखाकर अंधा कह दिया। इसको आप पिताजी आप इसको गुरु कह रहे हो, ये तो ये दोनों अंधे हैं, क्योंकि चक्षु उसे कहा जाता है जो शास्त्र को देखे, भौतिक या मांस के बने हुए लोथड़े को देखने वाले को चक्षु नहीं कहा जाता। कहते ये दोनों के पीछे चलना तो वैसा ही होगा जैसे अंधा व्यक्ति अंधे के पीछे चलता है। जैसे मान लीजिए रोड क्रॉस करना है और कोई अंधे को रोड क्रॉस करना है और कहे बाबा कोई रास्ता पास करा दो, रोड क्रॉस करा दो, और वह अंधा किसी अंधे का ही हाथ पकड़ ले तो दोनों अंधे का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पिताजी ये दोनों को गुरु बनाना तो वैसा ही है जैसे अंधा अंधे को पकड़ ले, इसलिए ये दोनों कभी गुरु नहीं हो सकते हैं, और कोई उपाय? कहते नेशाम मति वा अस्यु क्रमांगरी। प्रहलाद महाराज कहते हैं, गुरु यदि बनाना है ना तो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों को गुरु बनाना चाहिए, ऐसे अंधों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु की सबसे पहली योग्यता है कि वे कृष्ण के भक्त होने चाहिए। तो कृष्ण के भक्तों को यदि गुरु बना दिए तो निश्चित रूप से पिताजी आपका उद्धार हो जाएगा। इति उक्तम उपरतम पुत्रम हिरण्यकशिपुरुषा अंधी कृतात्मा स्वत्संग निरस्यत मही तले। ये जो संवाद था ये प्रहलाद को गोद में बिठाकर हो रहा था। अब तक प्रहलाद गोद में थे, पिताजी इस प्रकार से कह रहे थे, परंतु जब प्रहलाद ने कहा कि ये दोनों अंधे हैं और पिताजी आप भी अंधे हो, ये दोनों अंधे हैं और आप भी अंधे हो, अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ा है, आप सब नरक में जाने वाले हो, प्रहलाद इतना कह के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उठाकर बिल्कुल नीचे पटक दिया। प्रभुपाद जी ने यह दृश्य भागवत के सप्तम स्कंद के अगले पेज के ऊपर लगाया है, आप घर पे जाकर देख सकते हो। हिरण्यकश्यप ने अपने छोटे से पुत्र को पटक दिया पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ थे। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान थे। आहा मर्स ऋषाविष्ट कषायी भूत लोचन वद्यताम स्वयं वद्यो नीरसायत नेवृता। हिरण्यकश्यप जोर जोर से कहने लगा, अरे कोई है यहां पर, ये प्रहलाद को कोई मार डालो, ये प्रहलाद को कोई मार डालो, ये मेरे भाई का वध करने वाला विष्णु का भक्त बन गया है। देखो तो सही, ये सारा संसार मेरी भक्ति करता है और ये मेरे शत्रु विष्णु का भजन करने लगा है, और ये क्या विष्णु का भला करेगा? हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, ये क्या विष्णु का भला करेगा? जीते जी 5 साल की उम्र में अपने पिता को छोड़ दिया है, विष्णु को तो क्या ही पकड़ कर रखेगा। परोपपत्यम हितकृत थोषधम। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कह रहा है कि ये हमारे दैत्य कुल में ये अंगार प्रकट हुआ है। हिरण्यकश्यप एक नीति की बात कर रहा है कि जैसे हमारे शरीर में कोई अंग में सड़ जाए, जैसे यदि हमारे अंग में हमारे शरीर में एक उंगली सड़ जाती है तो बाकी के अंग को सुरक्षित रखने के लिए उंगली को काट देना चाहिए। यदि उंगली को नहीं काटोगे तो धीरे 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 पूरा हाथ सड़ जाएगा, फिर वो पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो पूरे शरीर को ठीक रखने के लिए उंगली को काट देनी चाहिए, वैसे ही यदि हम हमारे असुर कुल को ठीक जीवित रखना चाहते हैं, प्रहलाद को अभी काट दो, अभी मार डालो, मारने का आदेश दे दिया हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप ने सारे असुर सैनिकों को बुलाया, यहां पर आओ और प्रहलाद का वध कर दो, हत्या कर दो। सब सिपाही वहां पर आए और प्रहलाद को पकड़े। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको जीवित वापस मत लाना। देखिए एक बाप अपने पुत्र को क्या कह रहा है, इसको जीवित वापस मत लाना। प्रहलाद को पकड़े और जंगल में लेकर गए, एक पत्थर के ऊपर बिठाए और सभी सिपाहियों ने हाथ में तलवार और भाला ले लिया, चारों बाजू खड़े रह गए, कहे कि अभी भी समय है, विष्णु की भक्ति छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा परंतु आपको करना है तो आपको झोली माला दे दूं। ये नहीं मानेगा। सब असुर लोग हाथ में तलवार और भाला लेकर नारद मुनि कहते हैं किस प्रकार से, यहां लिखा है छिंदी भिंदी इति वादिन। छिंदी का अर्थ होता है मारो, भिंदी का अर्थ होता है काटो, मारो काटो मारो काटो, वैसे ही छिंदी भिंदी छिंदी छिंदी भिंदी छिंदी भिंदी करते करते सब असुर लोग आए और प्रहलाद महाराज को जोर से रनिंग लेकर दूर से भाग कर आते थे और आकर प्रहलाद महाराज के पेट में वो भाला और तलवार मारते थे। प्रहलाद को कुछ नहीं होता था, भाले मार मार कर थक गए, तलवार मार मार कर थक गए, ये लोग के सिर से पसीना निकलने लगा, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब विष्णु पुराण में वर्णन है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे असुर पिताओ चाचाओ, क्योंकि सब चाचा मामा ही थे सब, आप नहीं जानते हो मुझे क्यों नहीं लग रहा है, बताऊं, मैं जिसकी भक्ति करता हूं ना, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्त्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते, मैं जिसकी भक्ति करता हूं वे अपने धाम में भी रहते हैं, वे सबके हृदय में भी रहते हैं, वे इस संसार के सभी कण कण में भी रहते हैं, हे असुरो वे भगवान आपके तलवार और भाले में भी रहते हैं, एक भगवान अपने अपने भक्त को कैसे मार सकते हैं, तुम लोग मर जाओगे परंतु मैं कभी नहीं मरूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु के ऊपर विश्वास। बहुत बहुत मारने का प्रयास किया परंतु प्रहलाद को कोई नहीं मार सका। ये सब लोग वापस आए, सरकार तलवार और भाले से नहीं मर रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम, तलवार और भाले से नहीं मर रहा है। तब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया दिग्गजो, दिग्गज दिग्गजकार जानते हैं, इस ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए चारों दिशा में चार दिग्गज खड़े हैं, दिग्गज माने हाथी, और साधारण हाथी नहीं विशाल, अब ब्रह्मांड को सपोर्ट करने के लिए कितने बड़े हाथी होंगे। ऐसे दिग्गजों को बुलाया और आदेश दिया कि इस प्रहलाद को मार डालो। तो ये बड़े बड़े हाथी प्रहलाद को सबसे पहले पांव से गिरा देते थे और दूर से भाग कर आते और जोर से अपने दांत से प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास करते, क्या पता प्रहलाद महाराज को थोड़ा भी नहीं लगता। ये दिग्गज हाथी बहुत बहुत प्रयास किए परंतु प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप को कहा गया कि दिग्गज भी नहीं, वे भी फेल हो गए, दिग्गज भी फेल हो गए। तब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया दंत शुकेश्च, सर्पों को बुलाया, बड़े बड़े सर्प को वासुकी इत्यादि, बड़े बड़े सर्प को बुलाकर एक रूम में बंद किया और कहा कि इस प्रहलाद को जीवित मत छोड़ना। इतना कह के प्रहलाद को सर्प वाले रूम में डालकर बाहर से बंद कर दिया। प्रहलाद तो खड़े हैं, शांत मूर्ति हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा सभी सर्प प्रहलाद के ऊपर टूट पड़े, प्रहलाद को डंसने लगे। कहते हैं कि सभी सर्प इतना डसे सर्पों का जहर खाली हो गया, मणि निकल गया, सभी सर्पों के दांत टूट गए, फिर भी प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप के पास जाकर ये सारे सर्प हिरण्यकश्यप को कहते हैं कि सरकार हमारे मुख से फेण निकल गए, हमारे दांत टूट गए, मणि निकल गई, हम मरने की स्थिति में आ गए, परंतु आपके पुत्र को कुछ नहीं हुआ, न जाने कौन सा प्रभाव है उसमें। जब इसे सर्पों से नहीं मरा तब हिरण्यकश्यप ने कृत्या को प्रकट की। कृत्या जानते हैं, वहां के पुरोहितों ने अपने बाल अपने सिर से एक बाल निकाला, पृथ्वी पर पटका, पृथ्वी पर पटकते ही एक कृत्या एक असुरी उत्पन्न हुई, आसुरी शक्ति, और उत्पन्न होकर हाथ में त्रिशूल था और आदेश दिया कि इस प्रहलाद को मार डालो। जैसे ही वह कृत्या उस त्रिशूल को लेकर प्रहलाद के वक्षस्थल पर मारने का प्रयास करने लगी, विष्णु पुराण में वर्णन है उस कृत्या के त्रिशूल के 1000 टुकड़े हो गए, चूर चूर हो गए। कृत्या को समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ, तब कृत्या को समझ में आया कि ये भगवान के भक्तों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। कृत्या ने दूसरा त्रिशूल उठाया और दूसरे त्रिशूल से एक त्रिशूल शंड के पेट में और दूसरा अमर के पेट में दोनों गुरु पुत्र को मार दिया। दोनों हरि बोल हो गए। प्रहलाद के बदले में हम लोग हुए होते तो कितना खुश हो गए होते। एक गुरु गए, कई दिनों से परेशान कर रहे थे, पीछे पड़ गए थे, किसने सिखाया किसने सिखाया, आज समाप्त हो गए। परंतु प्रहलाद ऐसा नहीं किए। प्रहलाद बेचारे बहुत दुखी हुए। विष्णु पुराण में वर्णन है, प्रहलाद ने भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु प्रभु ये आपने क्या किया, आप मेरे दोनों गुरु शंड और अमर को जीवित कर दो। देखिए एक भक्त का स्वभाव, पर दुखे दुखी प्रहलाद यह दुख देख नहीं सके। अंत में भगवान को प्रार्थना किए कि मैंने जीवन में जितनी भी भक्ति की है ये सारी भक्ति में ये दोनों गुरु को दे देता हूं, सारे भक्ति के फल को दाव पर लगा दिए, परंतु आप मेरे गुरु को जीवित कीजिए। तब भगवान की कृपा से ये दोनों शंड और अमर जीवित हो गए। भक्त का स्वभाव। शंड और अमर प्रहलाद को लेकर घर पर आए। हिरण्यकश्यप ने कहा ये अभी भी नहीं मरा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि काम करो अवपात ने, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसे पर्वत पर लेकर जाओ और पर्वत से नीचे गिरा दो खाई में, इसकी हड्डी कुछ मिलेगा ही नहीं तब वापस आएगा। सभी सिपाही प्रहलाद महाराज को बहुत बड़े पर्वत के ऊपर लेकर गए और पर्वत के ऊपर से प्रहलाद महाराज को फेंक दी। अब प्रहलाद महाराज को फेंके हैं, परंतु भगवान कैसे अपने भक्त को, वास्तव में भगवान जो होते हैं नित्य निरंतर अपने भक्त की रक्षा करते हैं और भक्त जो होते हैं अपना सारा भार भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। अब सौंप दिया भगवान सब भार तुम्हारे चरणों में, प्रभु सारा भार आपके चरणों में, आपको जो करना है करो। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाएं के जाऊं कहाएं अब तेरे ही नाम की फेट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हे प्रभु हे मुरारी, अब यदि आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो इसमें मेरी हंसाई नहीं है। संसार के लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि ये कृष्ण का भक्त हो गया जिसकी रक्षा कृष्ण नहीं कर सके, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, मुझे कुछ नहीं मैं तो मर जाऊंगा। भगवान के भक्त भी बहुत चतुर होते हैं। प्रभु यदि मुझे कुछ हो गया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा। ब्रह्म आपकी बनाई हुई इतनी बड़ी सृष्टि में एक जीव यदि खाली भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, परंतु आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। संसार के लोग कहेंगे ये कृष्ण की भक्ति तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये किसी की रक्षा ही नहीं करते हैं, इसलिए प्रभु आपकी जगह सही होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना। भगवान सदैव, एक कवि तो बहुत सुंदर कहते हैं, जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ, जहां मेरे भक्त अपना पांव रखते हैं वहां पर भगवान कहते हैं मैं मेरा हाथ रख देता हूं ताकि उसे कंकर और पत्थर न लगे, कांटे न लगे। पीछे पीछे डोलू सदा में कभी ना छोड़ू साथ, और नित्य निरंतर में मेरे भक्त के साथ ही रहता हूं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। प्रहलाद को पर्वत से फेंका गया है, भगवान कैसे उसे मारने दे। तुरंत भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद को अपने हाथ में धारण कर लिए और तुरंत प्रहलाद को छोड़ दिया। दो दिन के बाद प्रहलाद महाराज ने बेल बजाया, पिताजी मैं आ गया। अरे ये अभी भी जीवित है। हिरण्यकश्यप क्रोधित, और क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि ये इसे नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यप गया महाराज, कौन महाराज, भोजन बनाने वाले महाराज के पास, कहा कि काम करो ये और कोई उपाय से नहीं मरता है, काम करो भोजन में विष मिला दो, मैं मंगा लेता हूं विष। कालकूट नाम का विष मंगाया जो गंध मात्र से व्यक्ति मर जाए, ऐसा विष प्रहलाद के भोजन में डालकर उसे खिलाया गया। प्रहलाद महाराज गोविंद और गोपाल का नाम ले लेकर उस विष को खा लिए, विष कुछ नहीं बिगाड़ सका। गरल सुधार रिपु करई मिटाई, गोस्वामी जी कहते हैं यदि भगवान के ऊपर विश्वास है, हृदय में भगवान की भक्ति है, तो विष भी अमृत हो जाता है। ये तो बहुत पहले की बात, कल की बात आप देखिए। मारवाड़ में मीराबाई नामक भक्ता हो गई, उसको विष दिया गया और मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरधारी गोपाल का नाम लेकर विष पी गई। विष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान की कृपा जिस पर होती है, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उसके लिए अमृत भी विष हो जाता है। भागवत अष्टम स्कंद राहु और केतु अमृत पिए थे परंतु भक्ति नहीं करने के कारण भगवान ने चक्र से सिर काट दिया समुद्र मंथन के बाद। भगवान की भक्ति जो करते हैं भगवान सदैव उसकी रक्षा। नारायण नाम के कवि हो गए, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, कहते हैं द्वय हाथन वारो सखे जन को कहां बिगाड़। इस संसार में दो हाथ वाला मेरे भक्त का क्या बिगाड़ सकता है, संसार में दो हाथ वाला भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकता है जिसकी रक्षा करने वाले हजारों हाथ वाले बैठे हों। नारायण रखवार है जाके भुजा हजार, जिसकी हजारों भुजा है वे दो हाथ वाले उसकी क्या बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं। प्रहलाद महाराज की रक्षा बार बार भगवान ने की, विष से रक्षा की, अंत में प्रहलाद महाराज को बहुत भूखा रखा गया। प्रहलाद महाराज को मारने के बहुत बहुत प्रयास, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये इतने प्रयास से भी नहीं मर रहा है, तब प्रहलाद महाराज को मारने का अंतिम प्रयास, और इस प्रयास में तो निश्चित प्रहलाद महाराज के लोग मार देंगे क्योंकि अद्भुत प्रयास था। कैसा प्रयास, हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, एक काम करो इसे मेरे विमान में बिठाओ, और विमान में बिठाकर ये जो महासागर अटलांटिक महासागर है, महासागर के बीचों बीच लेकर जाओ, और फिर एक बहुत बड़ा पत्थर इससे इसके शरीर से बांध दो और इसे विमान से महासागर में गिरा दो, ये बाहर ही नहीं निकल पाएगा, पत्थर के कारण तलेटी में चला जाएगा। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा वैसा ही किया, विष्णु पुराण में वर्णन है। प्रहलाद के साथ बहुत बड़ा पत्थर बांधा गया, अटलांटिक महासागर में फेंका गया, प्रहलाद महाराज बिल्कुल तलेटी में चले गए, और ये सब लोग किनारे के ऊपर खड़े रहकर देखने लगे। प्रहलाद महाराज बिल्कुल समुद्र की गहराई में चले गए, परंतु थोड़े से हिले, अरे प्रहलाद महाराज क्या हिले, पूरे समुद्र को उद्विग्न कर दिया, पूरा महासागर डोलने लगा, किनारे से बाहर आ गया। ये लोग हिरण्यकश्यप के पास दौड़ कर गए, महाराज स्पीकर भी डोल गया, महाराज प्रहलाद पूरे समुद्र को हिला दिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा एक काम करो, तुम जाओ और उसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर फेंककर प्रहलाद महाराज को गाड़ दो। देखिए कितना बड़ा मारने का प्रयास, बीच महासागर में प्रहलाद जहां पर बंधे हुए खड़े थे उसके ऊपर बड़े बड़े पर्वत फेंके गए, बड़े बड़े पत्थर चट्टाने फेंकी गई और प्रहलाद महाराज को पूरा कवर कर दिया और वे बिल्कुल बीच में फंस गए। और सब प्रयास में तो ये सब लोग असफल रहे, परंतु इस प्रयास में प्रहलाद महाराज बिल्कुल अटक गए। अब क्या करें, प्रहलाद महाराज बंधे हुए हैं और उसके ऊपर पर्वतों का ढेर है, झुक गए हैं प्रहलाद महाराज, क्या करें। उस स्थिति में भी प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण नहीं छोड़े, उस स्थिति में भी हरे कृष्णा, प्रहलाद महाराज उस स्थिति में भी भगवान का नाम लिए और अंत में भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरी बार बार रक्षा किए हो, आप गर्भ जैसी विकट स्थिति में भी रक्षा करते हो, निश्चित आप मेरी अभी भी रक्षा करोगे। प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना किए, भगवान का स्मरण किए, और भगवान का स्मरण करते ही जो भगवान सबके हृदय में विराजमान होते हैं वे भगवान वास्तव में अपने धाम से उतरकर प्रहलाद के हृदय में आए। भगवान जैसे ही प्रहलाद के हृदय में आए, प्रहलाद भगवान के समान शक्तिशाली हो गया, भगवान के समान सर्व शक्तिशाली होकर प्रहलाद महाराज बिल्कुल मुड़े हुए बैठे थे, झुके हुए थे, भगवान के समान शक्ति प्राप्त करके प्रहलाद महाराज ने दोनों हाथ ऊपर करके हे कृष्ण दोनों हाथ ऊपर क्या किया, उसके ऊपर जो पहाड़ों का ढेर था वह सारा ढेर उछल कर महासागर के बाहर निकल गया। और प्रहलाद महाराज बिल्कुल तैरते हुए ऊपर आए, ऊपर आकर महासागर के ऊपर चलते चलते तट पर आ गए। भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा कर ली, प्रहलाद को कुछ नहीं। इसलिए कहने वाले ने बहुत सुंदर कहा है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग वेरी होए। भगवान के एक भक्त को मारने के लिए पूरा संसार भी यदि तुल जाए, पूरा संसार मिलकर के भी भगवान के एक भक्त को कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान बैठे हैं। प्रहलाद की बारंबार रक्षा हुई और एक महीने के बाद प्रहलाद महाराज घर पर आए, बेल बजाया, हिरण्यकश्यपु ने दरवाजा खोला। अरे बाप रे बाप, अब हिरण्यकश्यपु दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर चिंतित हो बैठे। भागवत में लिखा है हिरण्यकश्यपु अपने दोनों, जैसे आजकल के पिता अपने पुत्र के कारनामे से दुखी होकर बैठ जाते हैं, अब क्या करें, पुत्र को डांट भी नहीं सकते हैं, घर से निकाल भी नहीं सकते हैं, वैसे ही हिरण्यकश्यपु दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर बैठ गए। वे काम करते हिरण्यकश्यपु को बैठने दीजिए, थोड़ा चिंतित भी बेचारा होना चाहिए। केवल भक्तों को चिंता नहीं, असुरों को भी चिंता होनी चाहिए। तो 5 बजे तक हिरण्यकश्यपु को चिंतित रहने दीजिए, देखते हैं 5 बजे के बाद क्या होता है। हरे कृष्णा।